ह विधि प्रकरणम प्रसंग। यहाँ से लेकर ग्रंथ के अंत तक वेद के विधि मंत्र नामधेय निषेध एवं अर्थवाद इन पांच प्रभेदों पर विस्तार से विचार किया जाएगा। विधि वेद का प्रथम प्रभेद है एवं ग्रंथ में इसका विस्तार दूसरों की अपेक्षा अधिक है। सर्वप्रथम विधि पर विचार किया जा रहा है। विधि लक्षणम तत्रा ज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि सच तादृश प्रयोजन वदर्थ विधाने नार्थवान यादृशम चार्थम प्रमाणांतरेणा प्राप्तम विधत्ते यथा अग्निहोत्रं जुहु यात स्वर्ग कामः इति विधिर मानांतरेणा प्राप्तम स्वर्ग प्रयोजन वद्धोमं विधत्ते अग्निहोत्र होमेन स्वर्गम भावते दिति वाक्यार्थ बोध। अर्थ वेद का जो भाग अज्ञात अर्थ का ज्ञान कराता है उसे विधि कहा जाता है। विधि की यही सार्थकता है कि जो स्वप्रयोजन अर्थ अन्य प्रमाणों से अज्ञात रहता है उसका विधान विधि करती है। उदाहरण के लिए अग्निहोत्रं जुहु यात स्वर्ग कामः यह एक विधि है। यह विधि स्वर्ग फलक याग का विधान करती है अर्थात अन्य प्रमाणों से न ज्ञात होने वाले स्वर्ग फलक याग का विधान करती है। उक्त विधि वाक्य का अर्थबोध अग्निहोत्र होमेन स्वर्गम भावयेत इस रूप में होता है। इसका अर्थ अग्निहोत्र नामक याग से स्वर्ग की संपन्न प्राप्त करे हैं। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी तत्र विधिम लक्ष्यति तत्रे त्यादिना तत्र पंच विधेषु वेद भागेषु मध्य इत्यर्थ अज्ञातेति अज्ञातस्य प्रयोजनवत् वतो अर्थस्य यागादि नामकस्य ज्ञापकत्वं विधित्वमित्यर्थः तदेवाह स चेत्यादिना स विधिर्यादृशं प्रमाणान्तरेणा प्राप्तं भवति तादृशम् अर्थं विधत्ते तेन च अज्ञात प्रयोजनवदर्थ विधाने नार्थवानिति योजना तत्रोदाहरणमाह यथा अग्निहोत्रमिति गुण विधिस्तु मानांतरेणा प्राप्तं गुणमात्रं विधत्ते। अर्थ बोधनी वेद के पांच भागों में से जो अज्ञात पदार्थ का ज्ञान कराता है वह विधि कहलाता है। विधि जिस अज्ञात अर्थ का ज्ञान कराती है उसका ज्ञान स्वयं में परिवर्तित नहीं होता अपितु उसका कुछ प्रयोजन रहता है। पुनश्च विधि अज्ञात विषय का केवल ज्ञान ही नहीं करती है अपितु विधान भी करती है अर्थात क्रिया विशेष के संपादन का विधान करती है। अतएव अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि इस विधि के लक्षण के पश्चात विधि के स्वरूप पर विचार करते हुए ग्रंथकार ने विधि के विशेषण के रूप में तादृश प्रयोजन वदर्थ विधाने नार्थवान पदों का प्रयोग किया है। यहाँ प्रयोजन वत पद के द्वारा ज्ञान के स्वयं में पर्यवसान होने का निवारण एवं विधाने इन पद के द्वारा अज्ञातार्थ ज्ञापन मात्र का निवारण करके अप्रवृत्त प्रवर्तन का भी ग्रहण किया गया है। अग्निहोत्रम जुहु यात स्वर्ग कामः यह विधि वाक्य है क्योंकि शब्द प्रमाण रूप वेद के अतिरिक्त प्रत्यक्ष आदि किसी प्रमाण से अग्निहोत्र का ज्ञान नहीं होता। अग्निहोत्र के संपादन का फल स्वर्ग प्राप्ति है अतएव अग्निहोत्र प्रयोजनवान अर्थ हुआ। विधि की यही विशेषता है कि वह ऐसे अर्थ का विधान करे जिसका कुछ प्रयोजन हो और जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि अन्य किसी भी प्रमाण का विषय न हो अपितु केवल प्रासंगिक वेद वाक्य का ही विषय हो। अग्निहोत्रं जुहुयात स्वर्ग कामः इस विधि वाक्य का मीमांसक दृष्टया स्पष्ट अर्थ इस प्रकार हुआ अग्निहोत्र होमेन स्वर्गम भाव एत। मीमांसा के अनुसार विधि वाक्य में भावना रहती है। भावना के पूर्वोक्त साध्य साधन एवं इति कर्तव्यता ये तीन अंश होते हैं। साधन एवं इति कर्तव्यता सामान्य एवं विशेष अथवा समस्त एवं व्यस्त भेद से भिन्न होने पर भी समान है। इसी प्रकार वस्तुतः भावना के दो मुख्य अंश साधन एवं साध्य हुए। तृतीय विभक्ति के द्वारा साधन एवं द्वितीय विभक्ति के द्वारा साध्य का बोध होता है। भावना का स्पष्ट बोध होने के लिए प्रत्येक विधि वाक्य के साधन एवं साध्य अंशों का स्पष्ट होना नितांत आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर अग्निहोत्रं जुहुयात स्वर्ग कामः वाक्य का अर्थ बोध अग्निहोत्र होमेन स्वर्गम भाव एत रूप में हुआ। यहाँ अग्निहोत्र होमेन पद तृतीय और स्वर्ग पद द्वितीय विभक्ति में है। अग्निहोत्रं जुहुयात स्वर्ग कामः यह विधि होम क्रिया का विधान करती है अतः उत्पत्ति विधि है। उक्त विवरण उत्पत्ति विधि को दृष्टि में रखकर किया गया है। प्रसंग, कुछ ऐसी विधियाँ होती हैं जिनमें होम आदि क्रियाओं का विधान नहीं होता, अपितु केवल क्रिया के अंगभूत पदार्थों का विधान होता है। क्रिया का ग्रहण किसी दूसरे विधि से हो जाता है, ऐसी विधि को गुण विधि कहते हैं। अब ग्रंथकार इस गुण विधि के स्वरूप का प्रदर्शन करते हैं। गुण विधि स्वरूपम यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम तत्र तदुद्देशेन गुणमात्रम विधत्ते यथा दध्ना जुहोति इत्यत्र होमस्य अग्निहोत्रं जुहुयात् इत्यनेन प्राप्तत्वाद् होमोद्देशेन दधि मात्र विधानं दध्ना होमं भावयेदिति। अर्थ, जहाँ पर कर्म का विधान अन्य प्रमाण से हुआ रहता है, वहाँ पर विधि कर्म को उद्देश्य करके गुण मात्र का विधान करती है, अर्थात अंगभूत द्रव्य या देवता का विधान करती है। उदाहरण के लिए दधना जुहोति, इस विधि स्थल में होम का विधान अग्निहोत्रं जुहुयात्। इस वाक्य से होने के कारण होम को उद्देश्य करके दधि मात्र का विधान किया जाता है। दधना जुहोति का मीमांसा की भाषा में अर्थ हुआ दधना होम भाव एत, अर्थात दधि के द्वारा होम का संपादन करे। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी प्रधान कर्मणस्तु मानांतरेण प्राप्तस्यानुवाद एवेत्याह यत्र कर्मेत्यादिना। अर्थबोधनी, दधना जुहोति गुण विधि है, इसमें केवल दधि का विधान किया गया है। जुहोति अंश तो अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, इस विधि से पूर्व ही प्राप्त हो चुका है, अतः होम का यहाँ पर अनुवाद मात्र है। जुहोति का अर्थ होम मुख्य है, उसी को लक्ष्य में रखकर उसकी अंगभूत दधि का विधान दधना जुहोति इस विधि के द्वारा किया गया है। विधि होने के कारण इसमें भी भावना विद्यमान है। भावना तथा उसके साध्य एवं साधन संज्ञक अंशों को स्पष्ट करने के लिए दधना जुहोति का मीमांसा दर्शन सम्मत अर्थ दधना होम भाव एत हुआ। दधना तृतीय विभक्ति में होने के कारण होम क्रिया का साधन दधि हुआ, और साधन सदैव गुण या गौण रहता है, अतएव दधि रूप गुण का विधान होने के कारण दधना जुहोति इस विधि को गुण विधि कहा गया। होम साधन होने के कारण द्वितीय विभक्ति में प्रयुक्त हुआ है। प्रसंग, कुछ ऐसी भी विधियाँ होती है जिनके द्वारा गुण या कर्म का एक साथ विधान होता है। ऐसी विधियों के द्वारा गुण एवं कर्म का विधान अलग अलग न होकर विशेषण एवं विशेष्य के रूप में होता है, विधान कर्म का विशेषण बनता है। ऐसी विधि को गुण विशिष्ट विधि कहते हैं। इसी प्रकार गुण विधि का निरूपण अब किया जा रहा है। विशिष्ट विधि स्वरूपम यत्र तुभयम् प्राप्तम तत्र विशिष्टम विधत्ते यथा सोमेन यजेत इत्यत्र सोमयाग योर प्राप्तत्वात् सोम विशिष्ट याग विधानम् सोम पदे मत्वार्थ लक्षण या सोमवता यागे नेष्टम भाव ये द्विती वाक्यार्थ बोध। अर्थ, जहाँ पर कर्म और गुण दोनों के दोनों प्रमाणांतर से अप्राप्त रहते हैं, वहाँ विधि गुण विशिष्ट कर्म का विधान करती है। जैसे सोमेन यजेत, इस विधि स्वर में सोम गुण और याग कर्म दोनों प्रमाणांतर से अप्राप्त रहते हैं, इसलिए सोम विशिष्ट याग का विधान किया जाता है। सोम पद में मत्वर्थ लक्षणा मानकर सोमेन यजेत का मीमांसा की भाषा में सोमवता यागे नेष्ठम भावयेत, अर्थात सोमयुक्त याग से स्वर्ग का संपादन करे, यह स्पष्ट अर्थ होता है। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी उभयमिति शेष शेष लक्षण उभयमित्यर्थ विशिष्ट मिति शेष विशिष्टम शेषिण मित्यर्थ तत्रोदाहरण माह यथा सोमेन यजेतेति ननु सोम रूपस्यैव यागस्यात्र विधिरस्तु किं विशिष्ट विधाने नित्याशंका सोमस्य द्रव्यत्वेन यागत्वा संभवात् सोम पदे मत्वर्थ लक्षणा स्वीकारेण विशिष्टस्यैव विधिर्युक्तत्वा मैव मित्याह सोम पदे इत्यादिना। अर्थबोधनी, स्वमेन यजेत सोमेन यजेत गुण विशिष्ट विधि है, जबकि दधना जुहोति केवल गुण विधि। गुण विधि में केवल गुण का विधान होता है, और होम आदि क्रिया की प्राप्ति किसी वैदिक वाक्य द्वारा पहले से ही हुई रहती है। उदाहरण के लिए दधना जुहोति में केवल दधि रूप गुण का विधान होता है, और होम की प्राप्ति अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग कामः इस विधि से पूर्व से ही हुई रहती है। गुण विशिष्ट विधि इससे भिन्न है, गुण विशिष्ट विधि के पूर्व ऐसी कोई विधि नहीं मिलती जिससे होम का या गुण का विधान हुआ रहता हो। अतएव गुण के विधान के साथ ही साथ होम के विधान का भार भी इसी विधि पर पड़ता है। किंतु मीमांसक यह मानने को तैयार नहीं कि एक ही विधि के द्वारा गुण एवं क्रिया दोनों का अलग अलग विधान होता है। एक ही काल में एक वाक्य के द्वारा दो पदार्थों के विधान नहीं हो सकते। अतएव मीमांसक एवं उपाय का आश्रय लेता है जिसके द्वारा अभिप्रेत दोनों पदार्थों का विधान हो भी जाए और पदार्थों के विधान से होने वाले दोष से भी बचा जा सके। उपाय यह है कि मीमांसक ऐसे स्थलों में विधान तो केवल एक पदार्थ होम आदि मुख्य याग का मानता है, हाँ गुण को क्रिया का विशेषण मान लेता है। इस प्रकार विशेष्य भूत क्रिया के विधान के अंतर्गत एक शब्द शक्ति विशेष है जिसका नाम लक्षण है। लक्षणा शक्ति शब्द में होती है। प्रकृति स्थल में लक्षणा से प्राप्त मतुप प्रत्यय का अभिप्राय वान अर्थात वाला है। इस प्रकार सोमेन यजेत का मीमांसा अभिमत अर्थ होगा सोमवता यागेन इष्टम भावयेत अर्थात सोमयुक्त याग से स्वर्ग का संपादन करे। स्पष्ट है कि यहाँ केवल याग का विधान है। ध्यान रहे यहाँ द्वितीया होने पर इष्ट का विधान नहीं है क्योंकि इष्ट की प्राप्ति याग द्वारा होगी अतएव याग ही विहित है। यागेन का विशेषण सोमवता है, विशेषण विशेष से पृथक नहीं होता। सोम गुण है जो कि मतुप प्रत्यय के योग से याग के विशेषण के रूप में आता है। अथवा यह भी कहा जा सकता है कि याग सोम रूप गुण से विशिष्ट है। इसलिए इस विधि को गुण विशिष्ट विधि अर्थात गुण विशिष्ट कर्म विधि कहते हैं। प्रकृत स्थल में इस विधि को हम सोम विशिष्ट याग विधि या सोम गुण विशिष्ट याग विधि कह सकते हैं। इस प्रकार सोमेन यजेत का मत्वर्थ लक्षणा से सोमवता यागे नेष्टम भावयेत अर्थ लेने से याग एवं सोम गुण दोनों का विधान भी हो गया। किंतु दोनों का अलग अलग विधान न होने के कारण कोई प्रतिपक्षी यह भी आपत्ति नहीं कर सकता है कि एक ही वाक्य में दो पदार्थों का विधान है। जैसा कि पहले बताया गया है लक्षणा द्वारा ही सोम का अर्थ सोमवत अर्थात सोमवान लिया गया है। यह इसलिए कि सोम का अर्थ सोम लेकर अभिप्रेत अर्थ सिद्ध नहीं हो सकता। मुख्य क्रिया के विधान के बिना गुण का विधान भी किस क्रिया को लक्ष्य करके होगा। प्रकृति स्थल की लक्षणा को उपादान लक्षणा करते हैं। भाले प्रवेश कर रहे हैं अथवा लाठियां प्रवेश कर रही हैं। यहाँ उपादान लक्षणा से वान अर्थात वाले अर्थ का योग करके भाले वाले पुरुष प्रवेश कर रहे हैं तथा लाठी वाले पुरुष प्रवेश कर रहे हैं यह अर्थ होगा। इसी प्रकार सोम का अर्थ भी सोमवान होगा। प्रसंग अब ग्रंथकार प्रकृति स्थल में वाक्य भेद नामक दोष के होने का खंडन करते हैं। वाक्य भेदापत्ते निराकरणम् न चोभय विधाने वाक्य भेद प्रत्येक मुभयस्या विधानात् किंतु विशिष्टस्यैकस्यैव विधानात् अर्थ यहाँ यह भी नहीं कहा जा सकता है कि एक ही विधि से सोम और याग दोनों के विधान मानने पर वाक्य भेद संज्ञक दोष आपन्न होता है। इसलिए कि दोनों का अलग अलग विधान ही नहीं हुआ है किंतु विशेषण युक्त एक क्रिया मात्र का ही विधान हुआ है। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी ननु शेष शेषि लक्षणस्योभय पदार्थस्य विधाने वाक्य भेदः स्यादेव न च स इष्ट इति वाच्यम् यत्र वाक्य भेद सत्राष्ट दोष प्रसंगात् तथा हि ब्रीहिर्भिर्यजेत् यवैर्वेयत् त्यत्र तत्र च प्रथम प्रयोगे ब्रियानुष्ठाने यव शास्त्र प्रमाणस्य स्वार्थानुष्ठापकत्व रूपस्य परित्यागः स्वार्थानुष्ठापकत्व रूपस्य प्रमाणस्य च स्वीकारो भवति ततो द्वितीय प्रयोगे यवानुष्ठाने तु पूर्व परित्यक्तस्य यव शास्त्रस्य प्रमाणस्य स्वीकारः स्वीकृतस्य च तद प्रमाणस्य परित्यागश्चेति यव शास्त्रे चत्वारो दोषा भवन्ति तथा प्रथम प्रयोगे यवानुष्ठाने ब्रह्मशास्त्र प्रमाणस्य स्वार्थानुष्ठापकत्व लक्षणस्य परित्यागः स्वार्थानुष्ठापकत्व स्वरूपस्य च प्रमाणस्य स्वीकारः ततो द्वितीय प्रयोगे ब्रह्मानुष्ठाने तु ब्रह्मशास्त्र प्रमाणस्य पूर्वं परित्यक्तस्य स्वीकारः स्वीकृतस्य च तद् प्रमाणस्य परित्यागश्चेति ब्रह्मशास्त्रे चत्वारो दोषा भवन्ति त्यष्ट दोष रुष्टो विकल्पो यथा ब्रीहि यव वाक्ये प्रसिद्ध तथा त्राति स्यात्। न च तद्वतत्रापिष्ट एवेति वाच्यम् तत्र व्रीहियवयोः पुरोडाश रूपैक कार्यकारित्वेन विकल्पशेष्टत्वाद् गत्यन्तराभावाच्च प्रकृते तु गुणविधि मात्र स्वीकारेणाप्युपपत्तौ नोभय विधि साधुरित्याशंक्य परिहरति न चेत्यादिना यद्वा ननु यागेनेष्टम् भावयेत् सोमेन च यागम् भावयेदित्यावृत्योभय विधाता विधावा वृत्तिलक्षणो वाक्यभेदः स्यात् तदा तु युगपत् प्रेण यागेनेष्टम् भावेत् सोमेन यागम् भावेदित्युभय विधानम् तदा तु विरुद्धत्रिकद्वय प्रसङ्ग इत्याशङ्कय परिहरति न चेत्यादिना एकवाक्यस्य प्रत्येकम् उभयपदार्थे व्यापारभेद भेदेनोभय विधायकत्वे वाक्यभेदो भवति तथात्रास्वीकारादित्यर्थः ननु विशेष्योपभयत्वे तद्विधायक वाक्यस्यापि व्यापारभेदेनैव तद्विधायकत्वम् सम्भवति नान्यथेति शङ्कते किं त्रिति विशिष्टस्यैकरूपत्वेन विधेयस्योभयत्वा सिद्धेर्न व्यापारभेदेन तद्विधानम् ततश्च न वाक्यभेद प्रसङ्ग इति परिहरति विशिष्टस्येति विशिष्टविधौ विशेषण विधेरार्थिकत्वेन श्रूयमाण विधिना गुणस्य पृथग् विधे यत्वादिति भावः अर्थबोधिनी सोमेन यजेत् इस वाक्य विधि वाक्य के द्वारा सोम विशिष्ट याग का विधान है। किसी भी व्यक्ति को आपाततः यह प्रतीत हो सकता है कि यहाँ वाक्य भेद नामक दोष है, किंतु वस्तुतः यहाँ वाक्य भेद है ही नहीं। वाक्य भेद ऐसे स्थानों पर हुआ माना जाता है जहाँ एक ही वाक्य से दो विधान माने जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि सोमेन यजेत इस वाक्य का अर्थ सोमेन यागम भावयेत और यागेन इष्टम भावयेत इन दो वाक्यों के द्वारा लिया जाए तो यहाँ पर वाक्य भेद एक ही वाक्य का दो वाक्य में टूट जाना होता है। प्रकृत स्थल में वाक्य भेद है ही नहीं, वस्तुतः यहाँ दो वस्तुओं का विधान है ही नहीं। यहाँ विधान केवल याग का है, सोमवता यागेन इष्टम भावयेत। हाँ, याग कैसा है इसका स्पष्टीकरण सोमवता पद द्वारा किया गया है। सोमवता पद याग का विशेषण है, ध्यान रहे यहाँ विधान सोम का नहीं है, सोमवत अर्थात सोम वाले का है अर्थात याग का है। जैसे राजपुरुष मानय वाक्य में उल्लिखित राजपुरुषम पद से पुरुष का आनयन होता है, राजा का नहीं। इसी प्रकार याग के विशेषण भूत सोमवतागत सोम पद गौण होने से विहित नहीं माना जा सकता। फिर दो विधान ही कहाँ हुए, विधान तो हुआ केवल याग का ही। यद्यपि इस विधि वाक्य से याग एवं सोम दोनों ही विहित भले ही हो पाए, परंतु दोनों का विधान मिलित रूप में एक ही है, इसलिए दो विधायक वाक्य नहीं बनाने पड़ते। अतएव यहाँ वाक्य भेद है ही नहीं। जब दो पदार्थों का अलग अलग विधान ही नहीं तब वाक्य भेद हो ही कैसे सकता है। प्रसंग सोमेन यजेत का गुण विधि क्यों न मान लिया जाए, इस प्रश्न को उठाकर उसका उत्तर दिया जा रहा है। सत्र गुण विधित्व शंका निराकरणम न च ज्योतिषोमेन स्वर्ग कामो यजेत इति विधि प्राप्त यागो देशेन सोम रूप गुण विधान में वास्तु सोमेन यागम भावयेत इति किं मत्वर्थ लक्षण येति वाच्यम तस्याधिकार विधित्वेनोपत्ति विधि स्वासंभवात। अर्थ यह भी कहना ठीक नहीं है कि ज्योतिषोमेन स्वर्ग कामो यजेत इस विधि से विहित याग को उद्देश्य करके केवल सोम रूप गुण का विधान मान लिया जाए, तब सोमेन यजेत का अर्थ सोमेन यागम भाव एत होगा और सोम पद में मत्वर्थ लक्षणा मानने से क्या लाभ। ज्योतिषोमेन स्वर्ग कामो यजेत अधिकार विधि है, यह उत्पत्ति विधि हो ही नहीं सकती, अतएव इससे याग का विधान ही नहीं माना जा सकता। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी ननु सोमेन यजेतेत्यस्य गुण विधित्वमेवास्तु सोम यागस्व रूप विधिस्तु ज्योतिषोमेन स्वर्ग कामो यजेते तयमेव भवतु ततश्च ज्योतिषोमेन इत्यादिना प्राप्ते कर्मणि गुण विधायकत्वेनापि सोम वाक्यस्योपपत्तौ न मत्वर्थ लक्षणा पद दोष रूपत्वे न न्याया स्वीकर्तव्ये क्या संकते न च ज्योतिषोमे नित्यादिना न च वाच्यमित्यत्र हेतुमाह। तस्याधिकार विधित्वेनेति तर्हि भवतु तस्याधिकार विधित्वमुत्पत्ति विधित्वमपि कुतो न स्यादित्यशंक्या आह उत्पत्ति विधित्वा संभवादिति कर्म स्वरूप मात्र बोधकस्यैव विधेरुत्पत्ति विधित्वं व्यवह्रियते। उत्पत्ति विधि विहितस्य च कर्मणः फल विशेषेण सह संबंध मात्रमधिकार विधि करोति। यथा आग्नेयो अष्टाकपालो भवति तेदुत्पत्ति विधि विहितस्य कर्मणः स्वर्गफल स्वर्ग रूप फल विशेषेण संबंधो दर्श पूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेतेत्यनेन विधिना क्रियत इति तस्याधिकार विधित्वमेव नोत्पत्ति विधित्वम् तद्वदस्याप्यधिकार विधिर्नोत्पत्ति विधित्वम् संभवतीति भावः। अर्थ बोधिनी सोमेन यजेत विधि का सोमवता यागेनेष्ठम् भावयेत। अर्थ लेकर सोमेन पद के स्थान पर सोमवता पद का प्रयोग किया गया है। सोमवता की निष्पत्ति सोम शब्द के आगे मतु प्रत्यय जोड़ने से हुई है। इस प्रकार सोमेन पद का अर्थ सोमवता हुआ, किंतु किसी भी पद का अपने से भिन्न अर्थ नहीं हो सकता। फिर सोमेन का अर्थ सोमवता कैसे होगा? सोम का अर्थ सोम एक प्रकार का द्रव्य होता है और सोमवत का अर्थ सोम वाला होता है। ग्रंथकार ने यहाँ लक्षणा के द्वारा सोम का अर्थ सोमवान लिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ लक्षणा का उपयोग वाला अर्थ में अर्थात मतुप अर्थ में हुआ है। मतुप अर्थ का बोध कराने वाली लक्षणा का प्रयोग करके सोमेन का अर्थ सोमवता लेना भी एक प्रकार का दोष ही है। इसे पद दोष कहा जाता है क्योंकि यह दोष पद में रहता है। अतएव यदि कोई ऐसा उपाय निकल आए कि सोम के स्थान पर सोमवत का प्रयोग न करना पड़े तो पद दोष की गलती से बचा जा सकता है। पूर्व पक्षी एक उपाय बतलाता है, वह सोमेन यजेत को गुण विधि मानने के पक्ष में है। उसके अनुसार दधना जुहोति एवं सोमेन यजेत दोनों एक ही जैसी विधियां हैं। जिस प्रकार अग्निहोत्रम जुहुयात विधि के जुहुयात अंश द्वारा याग का विधान मान लिया गया है, दधना जुहोति के द्वारा केवल दधि विहित माना गया था, उसी प्रकार ज्योतिषोमेन स्वर्ग कामो यजेत इस विधि से याग का विधान मानकर सोमेन यजेत विधि से सोम जैसे गुण का विधान मान लिया जाए। इस प्रकार सोम पद में मत्वर्थ लक्षणा मानने पर जो पद दोष होता था वह नहीं होगा। पूर्व पक्षी की इस युक्ति को सिद्धांती उचित नहीं मानता, कारण ज्योतिषोमेन स्वर्ग कामो यजेत यह अधिकार विधि है, अतएव इससे याग जैसी क्रिया का विधान नहीं माना जा सकता। अधिकार विधि अधिकार का निरूपण करती है, याग का विधान नहीं करती। एक विधि एक ही पदार्थ का विधान करेगी या बोध कराएगी, एक से अधिक का नहीं। अधिकार विधि याग संपन्न करने वाले व्यक्ति की फलोपभोग विषयक योग्यता का बोध कराती है, अतएव इसे केवल याग का विधान करने वाली विधि नहीं मान सकते। इसलिए ज्योतिषोमेन स्वर्ग कामो यजेत इस विधि से याग का विधान न हो सकने के कारण सोमेन यजेत को केवल गुण विधि नहीं मान सकते। प्रसंग अब ज्योतिषोमेन स्वर्ग कामो यजेत इसी प्रकार विधि को उत्पत्ति विधि एवं अधिकार विधि दोनों ही मान लिए जाने का खंडन किया जा रहा है। ज्योतिषोमेन इत्यादि विधेर उभय विधित्व शंका निराकरणम् ननु उद्भिदा यजेत पशुकाम इत्यस्येव ज्योतिषोमेन इत्यस्याप्युत्पत्त्यधिकार विधित्वम् अस्विति चेत् न दृष्टान्ते उत्पत्ति वाक्यान्तर्भावे नान्यथानुपपत्त्या तथा स्वाश्रयणात् किंच ज्योतिषोमेन इत्यस्योभय विधित्वेनैव यागस्तस्य फलसंबंधोऽपि बोधनीय इति सुदृढो वाक्यभेदः। तद्वरं सोमपदे मत्वर्थ लक्षणया विशिष्ट विधानम् अर्थ प्रश्न है, उद्भिदा यजेत पशु कामः की भांति ज्योतिषोमेन स्वर्ग कामो यजेत को भी उत्पत्ति एवं अधिकार विधि दोनों क्यों न मान लिया जाए? उत्तर है नहीं, क्योंकि दृष्टांत भूत उद्भिदा यजेत पशु कामः इस विधि स्थल में इसके अतिरिक्त अन्य कोई उत्पत्ति वाक्य नहीं मिलता है। इसलिए इसे अगत्या उत्पत्ति एवं अधिकार विधि दोनों मान लिया गया है। किंतु ज्योतिष टोमेन स्वर्ग कामो यजेत इस वाक्य को उत्पत्ति विधि एवं अधिकार विधि दोनों मानने पर इसी एक वाक्य से याग एवं यागफल स्वर्ग दोनों के दो विधान समझने होंगे। इस प्रकार दो विधानों के बोधक दो वाक्यों के हो जाने पर स्पष्टतः वाक्य भेद हो जाएगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि सोम पद में लक्षणा मानकर पूर्वोक्तानुसार सोम गुण विशिष्ट याग विधि का विधान ही माना जाए। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी ननु उद्भिदा यजेत पशु काम इत्यस्य विधिवाक्यस्य यथोद्भिन्नामक कर्म रूप बोधकत्व रूपोत्पत्ति विधित्वेति तस्य कर्मणः पशु रूप फल संबंध बोधकत्व रूपाधिकार विधित्वमपि भवति तद्वदस्याप्युभय विधित्वं विरुद्धमित्याशंकते नन्वित्यादिना दृष्टान्ते तु कर्म स्वरूप बोधकोत्पत्ति वाक्यांतरा भावेनैकस्य वाक्यस्योभय विधित्वमाश्रितं कर्मणः स्वरूप बोधनमन्तरेण तस्य फल संबंध बोधना नुपपत्या तस्यैव वाक्यस्योभय विधित्वाश्रयणादिति परिहरति दृष्टान्त इत्यादिना ननु ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेते इत्यस्य वाक्यस्योभय विधित्व स्वीकारे सोमेन यजेते तस्य मत्वार्थ लक्षणा मन्तरेणैव गुणमात्र विधायकत्व निर्वाहे को दोषण्यथा मत्वार्थ लक्षणा प्रसंगादित्या शंकय परिहरति किञ्चित्यादिना उभय विधित्व इति सोमयागस्य उत्पत्ति विधित्वे अधिकार विधित्वम् इत्यर्थ ज्योतिषोमेन स्वर्ग कामो यजेते यनेनैव सोमयाग स्वरूपम् तस्य स्वर्ग रूप फल संबंधस्य बोधनीय इत्यर्थ सुदृढ़ो वाक्य भेद इति गौरव लक्षणो वाक्य भेदो दृढ़तरो भवेद इत्यर्थ तथा चोक्तम् श्रोतव्यापार नानात्वे शब्दानां मति गौरवम् एकोक्त्यसीतानां तु नार्थाक्षेपो विरुध्यत इति ननु सोमेन यजेते इत्यत्रापि गुणस्य कर्मस्वरूपस्य च विधाने वाक्यभेदस्य सुदृढत्वादिति चेत् न विशिष्टविधौ विशेषणविधेरार्थिकत्वेन श्रूयमाणविधिना गुणस्य पृथग् विधेयत्वादिति निरस्तत्वात् न च तस्योत्पत्तिविधित्वे वाक्यभेदस्याभावेऽपि लक्षणादोषस्तु दुर्वार इति वाच्यम् तस्या वाक्यभेदादल्पदोषत्वात् लक्षणाया पददोषत्वात् वाक्यभेदस्य तु वाक्यदोषत्वात् पदवाक्यदोषयोर्मध्ये पददोषस्यैव कल्पनीयत्वाद् गुणे त्वन्याय कल्पनेति न्यायात् तस्मात् ज्योतिषोमेन स्वर्गकामो यजेते यस्योभयविधित्वे वाक्यभेद प्रसंगाद्वारं सोमपदे मत्वर्थ लक्षणां स्वीकृत्य गुण विशिष्ट कर्म स्वरूप विधान में वित्याशये नोपसंहरति तद्वर मित्यादिना अर्थ बोधनी सिद्धांती के मत से किसी एक ही विधि को उत्पत्ति विधि एवं अधिकार विधि दोनों नहीं माना जा सकता, परंतु पूर्व पक्षी ज्योतिष टोमेन स्वर्ग कामो यजेत को उत्पत्ति एवं अधिकार विधि दोनों ही मानना चाहता है। पूर्व पक्षी की युक्ति है कि स्वयं मीमांसक एक ही विधि को उत्पत्ति एवं अधिकार विधि मानते हुए पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए उद्भिदा यजेत पशु कामः एक ऐसी ही विधि है जिसे मीमांसक उत्पत्ति एवं अधिकार विधि दोनों मानते हैं। उस विधि में उद्भिद शब्द यागवाची है, अतएव याग का विधान करने के कारण उसे उत्पत्ति विधि माना जाता है और पशु कामः पद के प्रयोग होने के कारण यही विधि अधिकार विधि हो जाती है, क्योंकि इस पद से कर्मफल भोक्तृत्व का प्रख्यापन होता है। इस प्रकार जब उद्भिदा यजेत पशु कामः वाक्य उत्पत्ति एवं अधिकार विधि दोनों हो सकता है, तो फिर ज्योतिषोमेन स्वर्ग कामो यजेत इस विधि को भी उत्पत्ति एवं अधिकार विधि दोनों क्यों न मान लिया जाए। सिद्धांती इस प्रस्ताव को नहीं स्वीकार करता, वह इसलिए कि उद्भिदा यजेत पशु कामः के प्रसंग में हमें कोई दूसरी उत्पत्ति विधि प्राप्त नहीं होती जिससे क्रिया का विधान हो सके, इसलिए और कोई उपाय न होने के कारण अधिकार विधि होने पर भी इसे उत्पत्ति विधि मान लिया जाता है। किंतु ज्योतिषोमेन स्वर्ग कामो यजेत इस विधि को उत्पत्ति एवं अधिकार विधि दोनों मानने पर इस एक विधि से दो विधान मानने हो पड़ेंगे। जैसे मानने पर नियमतः वाक्य भेद हो पड़ेगा, अर्थात दो विधानों के लिए दो भिन्न भिन्न वाक्य मान्य होंगे। वे दोनों वाक्य इस प्रकार होंगे, ज्योतिषोमेन यागम भाव एत एवं यागेन स्वर्गम भाव एत। इस प्रकार ज्योतिषोमेन स्वर्ग कामो यजेत। इस प्रकार एक ही विधि वाक्य के दो वाक्य हो जाने पर यहाँ दोष न हो, यह विचार कर उभय विधित्व का त्याग कर विशिष्ट विधि को स्वीकार कर लिया गया है। विशिष्ट विधि को स्वीकार कर लेने पर वाक्य भेद नहीं होगा। हाँ, मत्वर्थ लक्षणारूप पद दोष अवश्य होगा, किंतु वाक्य भेद रूप वाक्य दोष लक्षणारूप पद दोष से बड़ा दोष है। अतएव बड़े दोष से बचने के लिए छोटे दोष को स्वीकार कर लेना ही उचित है। इसलिए सोमेन यजेत में विशिष्ट विधि ही मानना उचित होगा। प्रसंग, विधि के लक्षण तथा गुण विधि एवं विशिष्ट विधि के स्वरूप का निरूपण कर चुकने के बाद अब ग्रंथकार विधि के प्रभेदों का उल्लेख करते हैं। विधि चतुर्विध, विधि चतुर्विध उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधि, शेति। अर्थ, विधि के चार प्रभेद हैं, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि एवं प्रयोग विधि। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी विधि विभजते विधि चतुर्विध इति। अर्थबोधनी ग्रंथकार ने यहाँ विधि के चार प्रभेद बताए हैं। ये प्रभेद हैं उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि एवं प्रयोग विधि। इन विधियों का विशेष परिचय प्रासंगिक स्थलों पर दिया जाएगा। यहाँ संक्षेप में इनके स्वरूप पर प्रकाश डाला जा रहा है। उत्पत्ति विधि की विशेषता यह है कि यह सदैव किसी प्रधान क्रिया का विधान करती है, अतएव इसे प्रधान विधि या अपूर्व विधि भी कहा जाता है। जैसे अग्निहोत्रम जुहोति, यह विधि उत्पत्ति विधि है क्योंकि यहाँ पर अग्निहोत्र नामक मुख्य क्रिया का विधान किया गया है। अन्य छोटी मोटी क्रियाएं इसी मुख्य यज्ञ का अंग बनेंगी, जिनके विधायक वाक्य उत्पत्ति विधि से भिन्न होंगे। विनियोग विधि अंगी एवं अंग के बीच होने वाले अंगांगी भाव संबंध का बोध कराती है। गुण के अंतर्गत प्रोक्षण आदि क्रियाएं, दधि आदि द्रव्य, एकत्व आदि संख्या एवं आरुण आदि अमूर्त पदार्थ आते हैं, जो प्रधान क्रिया के अनुष्ठान में अंग बनते हैं। उदाहरण के लिए दधना जुहोति, यह एक गुण विधि है। यहाँ दधि प्रधान भूत क्रिया अग्निहोत्र नामक यज्ञ का अंग है। अधिकार विधि के द्वारा यह निर्णय किया जाता है कि अमुक योग्यताओं या अर्हताओं से युक्त व्यक्ति यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। संक्षेप में यह समझना चाहिए कि अधिकार विधि प्रासंगिक यज्ञ का अनुष्ठाता कौन व्यक्ति हो सकता है, उसमें कौन कौन से गुण या विशेषताएं होनी चाहिए, इस विषय का निर्णय करती है। उदाहरण के लिए राजा राजसूयेन स्व राज्य कामो यजेत, यह अधिकार विधि है। इस विधि के द्वारा यह प्रख्यापन होता है कि जो व्यक्ति स्वराज्य को प्राप्त करने का इच्छुक हो और साथ ही साथ जो व्यक्ति राजा भी हो, अर्थात वर्ण से क्षत्रिय हो, वही राजसूय करने का अधिकारी है, अर्थात राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान का फल उसी को मिलेगा जो स्वराज्य का इच्छुक होते हुए क्षत्रिय भी हो। प्रयोग विधि क्रम का विधान करती है। अनेक क्रियाओं से यज्ञ संपन्न होता है, सभी क्रियाएं एक साथ नहीं हो सकती, अपितु एक एक करके ही उनका अनुष्ठान हो सकता है। अब प्रश्न उठता है कि कौन क्रिया पहले होगी और कौन बाद में। वेदं कृत्वा वेदिं करोति प्रयोग विधि का एक उदाहरण है। यह विधि निर्णय करती है कि पहले कुछ मुष्टि को बनाया जाएगा, तत्पश्चात वेदी को। ग्रंथकार की दृष्टि में विधियों का यही मुख्य विभाजन है। हाँ, दृष्टि भेद से विधियों के उक्त प्रकार के वर्गीकरण के अतिरिक्त दो अन्य प्रकार के वर्गीकरण इस ग्रंथ में प्राप्त होते हैं। इन दो वर्गीकरणों में एक वर्गीकरण इस चतुर्विधात्मक वर्गीकरण के पूर्व हो चुका है। इसके अंतर्गत तीन प्रकार की विधियाँ प्राप्त होती है। एक विधि अर्थात प्रधान विधि अथवा उत्पत्ति विधि, इसका उदाहरण है अग्निहोत्रम जुहोति स्वर्ग कामः। दो गुण विधि, इसका उदाहरण है दधना जुहोति। विधि के चतुर्विधात्मक वर्गीकरण में इस विधि को विनियोग विधि कहा गया है। तीन गुण विशिष्ट विधि, इसका उदाहरण है सोमेन यजेत एक का विधान। इसके अतिरिक्त अवशिष्ट एक वर्गीकरण मंत्र मीमांसा के अंतर्गत प्रसंगवश आता है। इसके अंतर्गत विधियों के तीन प्रभेद पाए जाते हैं। एक अपूर्व विधि, वस्तुतः यह उत्पत्ति विधि ही है, इसका उदाहरण है यजेत स्वर्ग कामः। नियम विधि, इसका उदाहरण है विहीन अवहंती, यह विधि दृष्टिकोण भेद से विनियोग विधि ही है। परिसंख्या विधि इसका उदाहरण है। पंच पंच नखा भक्ष्या इसके स्वरूप का विवेचन परिसंख्या विधि के विवेचन में ही देखना चाहिए। प्रसंग उक्त चारों विधियों में से पहली उत्पत्ति विधि का निरूपण किया जा रहा है। उत्पत्ति विधिर लक्षणम तत्र कर्म स्वरूप मात्र बोध को विधिर उत्पत्ति विधि यथा अग्निहोत्रम जुहोति इति अत्र च विधौ कर्मणः करणत्वेनान्वयः अग्निहोत्र होमेनेष्ठम भाव एत इति। अर्थ चारों विधियों में जो विधि केवल कर्म के स्वरूप का बोध कराती है वह विधि उत्पत्ति विधि कही जाती है। जैसे अग्निहोत्रम जुहोति यह वाक्य उत्पत्ति विधि है। इस विधि में कर्म का कारण रूप में अन्वय होता है। इस प्रकार इसका बोध गम्य मीमांसा सम्मत अर्थ होता है। अग्निहोत्र होमेनेष्ठम भावेत अर्थात अग्निहोत्र नामक होम के द्वारा इष्ट का संपादन करें। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी तत्रोत्पत्ति विधि लक्ष्यति तत्र इत्यादिना तत्र चतुर्णाम विधिनाम मध्य इत्यर्थ कर्म स्वरूप मात्रेत्यत्र मात्र पदेनोत्पत्ति विधेः कर्मणा फलादिना सह संबंध बोधकत्वं वारयति उद्भिदा यजेत पशु काम इति विधेस्तु शौतम अधिकार विधित्वमेव उत्पत्ति विधित्वं तु कर्म स्वरूप बोधक विध्यंतराभावेनार्थिक मेवेति न दोषः। तत्रोदाहरण माह यथा अग्निहोत्रं जुहोतीति एतदुपलक्षणं सोमेन यजेत तप्ते पयसि दध्यानयति सा वैश्वदेव्यामीक्षा वाजिभ्यो वाजिनम् यदा अग्नेयो अष्टकपालो अमावस्यायां च पौर्णमास्यायां चाचितो भवति इत्यादिनां तथा च तत्र द्वितीयाध्याये कर्मोत्पत्ति विधीनामेव भेदो निरूपितः। अत्र व्युत्पत्ति विधि लक्षण प्रदर्शनेनैव तेषां भेदो अपि ध्वनित एव शब्दांतराधि भिर्हेतुभि अस्माभिस्तु पूर्वमेव तेषां भेद संक्षेपेण निरूपित इत्युपरम्यते। ननु चात्रोत्पत्ति विधौ कर्मणः साध्यत्वेनान्वयो भवतु अग्निहोत्रं होमं कुर्यादिति गृहीन प्रोक्षतीति वदग्निहोत्रं जुहोति तत्रापि द्वितीयायाः साध्यत्ववाचकत्वात् तथा च साध्यस्य साध्यत्वस्वभावादेव साध्यंतर साधनत्वा संभवेन साध्यंतरान्वया योगादधिकार विध्यवगत फल संबंधानुपपत्ति इत्यादित्या शंकया। अत्र च विधा विद्यादिना अग्निहोत्र होमेनेष्ठम भावयेदिति कर्णत्वेनान्वये तु किं तदिष्टमिति वीक्षायाम् अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्ग काम इत्यधिकार विध्यवगत फल संबंधोपत्तेः स्वसाधन निष्पादितस्य सिद्ध स्वभावस्यैव कर्णत्वेनान्वयाच्च न कोऽपि दोष इति भावः। ननुत्पत्ति विधाविष्ट बोधक पदस्याभावादग्निहोत्र होमेनेष्ठम् भावयेदिति कथम वाक्यार्थः स्यादिति चेत् न विधेरेवेष्टाक्षेपकत्वात् अन्यथा तस्या पुरुषार्थभूते कर्मणि पुरुष प्रवर्तकत्वानुपपत्ति स्यात्। अर्थबोधनी जैसा कि पूर्व में ही निर्देश दिया जा चुका है चारों विधियों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। उत्पत्ति विधि भी अन्य तीनों में विलक्षण है। इसकी विशेषता यह है कि जो वेद वाक्य केवल प्रधान क्रिया का विधान करता है उत्पत्ति विधि होता है। इसलिए ग्रंथकार ने इसका लक्षण कर्म स्वरूप मात्र बोध कह किया है। याग शब्द के प्रयोग से यह सूचित होता है कि उत्पत्ति विधि के द्वारा केवल क्रिया मुख्य क्रिया का ही विधान होता है जबकि अन्य विधियों में मुख्य क्रिया से संबद्ध पदार्थों का विधान होता है। उत्पत्ति विधि के अतिरिक्त तीन विधियों में जिन पदार्थों का विधान होता है वे क्रियाएं क्रियाओं से संबद्ध होते हैं अतः वे विधियां भी बिना क्रिया के उल्लेख किए कृतार्थ नहीं हो सकती इसलिए उन्हें भी क्रिया का उल्लेख करना पड़ता है। उदाहरण के लिए दधना जुहोति यह एक विनियोग विधि है। यहाँ होम के साथ होने वाले दधि के संबंध का विधान किया जाता है। यद्यपि होम का विधान इस विधि के द्वारा नहीं होता तथापि जुहोति पद से होम रूप प्रधान क्रिया का उल्लेख हो जाता है फिर भी इसे उत्पत्ति विधि नहीं मान सकते क्योंकि उत्पत्ति विधि में केवल मुख्य क्रिया का विधान होता है और यहाँ गुण विधि स्थल में पूर्व विहित क्रिया का तो अनुवाद ही होता है विधान केवल गुण का होता है। इसी प्रकार अन्य विधियों के विषय में भी समझना चाहिए। यही कारण है कि कर्म स्वरूप मात्र बोधका में मात्र शब्द का प्रयोग किया गया है। विभाग 18 के अंतर्गत मीमांसक उद्भिदा यजेत पशु काम विधि को अधिकार विधि के साथ साथ उत्पत्ति विधि भी मानता है, जबकि यह विधि पशु रूप फल की भी बोधका है न कि कर्म स्वरूप मात्र की, फिर इसे उत्पत्ति विधि क्यों माना जाए। इस आशंका का निवारण मीमांसक इस प्रकार करता है, उद्भिदा यजेत पशु काम यह मुख्यतः अधिकार विधि है, किंतु प्रकृति स्थल में कोई दूसरा उत्पत्ति वाक्य विद्यमान नहीं था, इसलिए इसे गौण रूप में उत्पत्ति विधि मान लिया गया है। अग्निहोत्रम जुहोति यह उत्पत्ति विधि है, विधि होने के नाते इसमें भावना विद्यमान है। भावना के साधे साधन एवं इति कर्तव्यता ये तीन अंश होते हैं। उत्पत्ति वाक्य में कर्मवाचक अग्निहोत्र पद द्वितीयांत है, द्वितीयांत अग्निहोत्रम पद द्वारा ज्ञाप्य अग्निहोत्रम क्रिया प्रधान कर्म है। प्रधान कर्म के अनुष्ठान से ही स्वर्गादि मुख्य फल की प्राप्ति होती मानी जाती है। आयास साध्य अग्निहोत्र आदि क्रियाएं अनुष्ठान मात्र प्रयोजक नहीं है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि अग्निहोत्र क्रिया स्वर्गादि फल का साधक है, अतः प्रत्येक फल में क्रियावाचक अग्निहोत्र पद द्वितीयांत न होकर तृतीयांत होना चाहिए, अर्थात अग्निहोत्र पद अन्य कारक के रूप में प्रयुक्त हुआ न समझ कर करण कारक अर्थ में प्रयुक्त समझा जाना चाहिए, तब अग्निहोत्र जुहोति का रूप होगा। अग्निहोत्र हो मेन इष्टम भावयेत, यहाँ भावयेत पर स्पष्टता भावना की सत्ता का संकेत कर रहा है, तथा अग्निहोत्र होमेन एवं इष्टम क्रमशः साधन एवं साध्य का यद्यपि अग्निहोत्रम जुहोति वाक्य में इष्ट पद का प्रयोग नहीं हुआ है, तथापि यतः प्रत्येक क्रिया का कुछ न कुछ प्रयोजन अवश्य होता है, इसलिए अग्निहोत्र याग का भी कुछ न कुछ प्रयोजन होगा। इस प्रकार का प्रयोजन अधिकार विधि द्वारा निर्दिष्ट हुआ करता है। प्रत्यस्थल की अधिकार विधि अग्निहोत्रम जुहिया तो स्वर्ग काम है, अतएव अग्निहोत्र रूप होम का फल स्वर्ग है, यही स्वर्गकर्ता को इष्ट होता है, अतएव अग्निहोत्र जुहोति का अर्थ करते समय इष्ट पद का अध्याहार किया गया है, तब प्रकृत उत्पत्ति विधि का उक्त अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावयेत अर्थ संपन्न हुआ। प्रसंग अब अग्निहोत्रम जुहोति के उत्पत्ति विधि होने में आक्षेप उपस्थित करके उसका निवारण किया जा रहा है। यागस्य द्वे रूपे ननु यागस्य द्वे रूपे द्रव्यम देवता च तथा च रूपाश्रवणे अग्निहोत्रम जुहोति इति कथम उत्पत्ति विधि। अग्निहोत्र शब्दस्य तु तत्प्रख्यन्यायेन नामधेयत्वादिति चेत् न रूपाश्रवणेत्यस्योत्पत्ति विधित्वात् अन्यथा रूपश्रवणात् दध्ना जुहोति यमेवोत्पत्ति विधि स्यात् तथा च अग्निहोत्रम जुहोति इति वाक्यम अनर्थकम् स्यात्। अर्थ पूर्व पक्षी का यह प्रश्न है कि याग के दो रूप होते हैं, द्रव्य एवं देवता, किंतु अग्निहोत्रम जुहोति वाक्य में द्रव्य एवं देवता में से किसी एक का एक भी रूप का श्रवण नहीं है, फिर इसे उत्पत्ति विधि क्यों माना जाए। अग्निहोत्र शब्द में द्रव्य अथवा देवता का श्रवण नहीं है, क्योंकि तत्प्रख्य न्याय से अग्निहोत्र शब्द याग का नाम मात्र है। सिद्धांति का उत्तर है कि नहीं, क्योंकि यद्यपि अग्निहोत्रम जुहोति में रूप का श्रवण नहीं है, फिर भी यह वाक्य उत्पत्ति विधि हो सकता है। अन्यथा यदि रूप के श्रवण से ही कोई वाक्य उत्पत्ति विधि हो जाता तो दधना जुहोति भी उत्पत्ति विधि हो जाता, क्योंकि इसमें दधि जैसे द्रव्यात्मक रूप का श्रवण होता है, और दधना जुहोति वाक्य को उत्पत्ति विधि मान लेने पर अग्निहोत्रम जुहोति वाक्य व्यर्थ हो जाएगा। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी ननु गुरु मते विधि स्वसिद्ध्यर्थमेव नित्यादिषु कर्मसु पुरुषं प्रवर्तयति तथा च कार्यकर्मोत्पत्ति विधिनामिष्टान्तरा क्षेपकत्वेपि न नित्यादि कर्मोत्पत्ति विधिनिष्टान्तरा क्षेपकत्वं संभवति न च लिंगादि शब्द व्यापारस्य विधेय नित्यत्वेन कथं तस्य स्वसिद्ध्या क्षेपकत्वमिति वाच्यम्। गुरुमता परिज्ञानात् तथा हे वशिष्ठ शब्द तावलिंगादि शब्द वचन तदर्थ वचन भवति तत्र भट्टमते तदर्थस्तु शब्द व्यापार विशेषो भाव नैव गुरुमते तु नियोगाख्यम पूर्वमेव लिंगादि शब्दार्थ भूतो विधि तस्य च साध्यस्व भावत्वेन स्वसिद्धाक्षेपकत्व मुपपद्यते यथा च लोके लिंग कार्य व्युत्पत्त्य निरोधेन अग्निहोत्रम् जुहुयादित्यादावपि लिंगानियोग एव प्रतीयते नियोगस्याधिकार विषयादि सापेक्ष एव तत्र कस्य नियोग इत्यधिकार्यांशायां जीवनादिमत् इति जीवनादि विशिष्टो अधिकारित्वेन संबध्यते। पुत्र नियोग इति विषयाकांक्षायां तु होमा दावेति होमादिर्विषयत्वेन संबध्यते। होमादि विषयस्य नियोगः कृति साध्यते तैव प्रतीयते, तस्य च साक्षात् कृति साध्यत्वा संभवेन स्वस्य कृति साध्यत्व निर्वाहार्थ विषयतया संबद्धस्य होमादेह करणत्वम् अप्याक्षिपति। तदुक्तं शालिकायां कृति तत्साध्यम् ध्यस्थो यागादिर्विषयो मतः कार्ये संख्यचितिता कार्ये करणत्वेन सम्मतः इति। तस्मात् काम्यकर्मोत्पत्ति विधेः विश्वजीता यजेते त्यादि विधेश्च स्वप्रवर्तकत्वान्यथानुपपत्या सामान्यतः प्रयोजन विशेषाक्षेपकत्वेति नित्यकर्मोत्पत्ति विधेः स्वसिद्धेरेव प्रयोजनत्वान्न प्रयोजनान्तराक्षेपकत्वमिति चेत् न नियोगाख्या विधेः स्वरूपेणा प्रयोजनत्वेन स्वसिद्धये पुरुष प्रवर्तकत्वानुपपत्तेः अन्यथा विश्वजीता यजेतेत्यादावपि विधेः स्वसिद्ध्यर्थमेव पुरुष प्रवर्तकत्वापत्तेः। तच्चानिष्टम् स स्वर्गः स्यात् सर्वान् तस्य विशेषात् इति न्याय विशेषात् तस्मान्नित्यादिष्वपि कर्मसु स्वर्ग धर्मेण पापम् पनुदत्तीत्यादि शास्त्रानुरोधेन पापक्षयादिकम् वा प्रयोजनम् स्वीकर्तव्यमित्यलक्ष्य मतिप्रसङ्गेन प्रकृतम् अनुसरामः। तस्मात् साधुक्तमुत्पत्तिविधौ कर्मणः करणत्वेनान्वय इति। ननु अग्निहोत्रम् जुहोति यस्य नोत्पत्तिविधित्वम् द्रव्यदेवतात्मकस्य कर्मरूपस्यात्रा श्रवणादित्या सङ्कते नन्विति। ननु अग्नये होत्रमत्रे त्यग्निहोत्रशब्देनाग्निदेवतात्मकस्य कर्मरूपस्य श्रवणात् कथम् रूपाश्रवणमित्यासङ्ख्याः अग्निहोत्रशब्दस्येति अग्निहोत्रशब्दस्य तत्प्रख्यम् चान्यशास्त्रमिति तत्प्रख्य न्यायेन नामधेयत्वस्य वक्ष्यमाणत्वान्न कस्यापि कर्मरूपस्य श्रवणमत्रेत्यर्थः। यद्यप्यत्र कर्मणो रूपम् न श्रूयते तथापि विध्यन्यथानुपपत्या तत् कल्प्यते। तच्च सामान्यतः कल्प्यमानम् द्रव्यदेवतात्मकम् कर्मणो रूपम् विशेषाकांक्षाया गुणविधिमन्त्रवर्णाभ्याम् विशेषेण चावगम्यमानम् अत्र सम्भवति। ततश्चाग्निहोत्रम् जुहोतीत्यत्र द्रव्यदेवतात्मकस्य कर्मरूपस्य श्रवणाभावेत्यस्य होमरूपकर्मस्वरूपमात्रबोधकत्वरूपमुत्पत्तिविधित्वम् सम्भवतीत्याशयेन परिहरति नेति। तत्र निरुक्ताशयम् हेतुमाह रूपाश्रवण इति विपक्षे बाधकमाह अन्यत् हेति। अग्निहोत्रम् जुहोतीत्यस्य रूपाश्रवणमात्रेणोत्पत्तिविधित्वानङ्गीकारे दध्ना जुहोति यस्यैवोत्पत्तिविधित्वम् स्यात्। अत्र कर्मस्वरूपस्य श्रवणादित्यर्थः दध्ना जुहोति यस्याग्निहोत्र कर्मोत्पत्तिविधित्वे वाक्य अन्तरस्यानर्थक तम् अनिष्टमापादयति तथा चेति न चाग्निरूप गुणविधित्वे नाप्यस्योत्पत्तिरिति वाच्यम्। अग्निज्योति इत्यादि मन्त्रवर्णेन अग्निरूपगुणस्य प्राप्तत्वात् कर्मनामधेयत्वस्य वक्ष्यमाणत्वाच्च तस्मादनर्थकमिति साधुक्तम्। किञ्च दध्ना जुहोति तस्योत्पत्तिविधित्वे पयसा जुहोतीत्यस्यापि वैयर्थ्यम् कर्मान्तर्विधायकत्वम् वा स्यात्। होमस्योत्पत्तिशिष्ट दध्यवरुद्धत्वेन त्यस्य होमोत्पत्तिविधित्वे तु दध्ना जुहोति पयसा जुहोति इत्यादि वाक्यस्य सर्वस्यापि तत्र फले कपोतन्यायेन युगपद्यध्यादि गुणविधायकत्वेनायुपत्या नानेकदृष्टकल्पना प्रसङ्ग इत्यग्निहोत्रम् जुहोतीत्यस्यैवोत्पत्तिविधित्वम् न्यायमित्यलमिति विस्तरेण अर्थबोधिनी। पूर्वपक्षी कहता है कि अग्निहोत्रम् जुहोति को उत्पत्ति विधि नहीं माना जा सकता क्योंकि उत्पत्ति विधि याग स्वरूप प्रधान कर्म का विधान करती है, परंतु अग्निहोत्रम् जुहोति वाक्य में याग का लक्षण चरितार्थ नहीं होता। मीमांसा के अनुसार याग का लक्षण है उद्दिश्य देवतां द्रव्य त्यागो यागो विधीयते, अर्थात याग उसे कहते हैं जिसमें देवता को उद्देश्य करके तन्निमित्तक द्रव्य का त्याग किया जाता हो। इस प्रकार द्रव्य एवं देवता ये दो याग के रूप हुए और इन दो रूपों में से एक भी रूप अग्निहोत्रम जुहोति वाक्य में नहीं पाया जाता। अग्निहोत्र शब्द एक क्रिया का पारिभाषिक नाम है, न कि अग्नि देवता का अथवा क्रिया के आधारभूत अग्नि रूप गुण का वाचक। इस विषय का विस्तृत विवेचन इसी पुस्तक के नामधेय प्रकरण में देखा जा सकता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि अग्निहोत्र शब्द एक क्रिया विशेष का पारिभाषिक नामधेय अर्थात नाम है। यह बात तत्प्रख्य न्याय से सिद्ध होती है। यहाँ तत् शब्द का अर्थ गुण है और प्रख्य शब्द का अर्थ प्रक्षापक या बोधक है, अर्थात यदाहवनीये जुहोति एवं यदग्ने च प्रजापतये च सायं जुहोति वाक्यों में क्रमशः यज्ञ के आधारभूत अग्नि एवं देवताभूत अग्नि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जिस आधारभूत अग्नि में हवन किया जाता है उस अग्नि की एवं जिसके लिए द्रव्य त्याग किया जाता है उस अग्नि की, इस प्रकार गुणभूत दोनों प्रकार की अग्नियों की प्राप्ति को प्राप्ति हो जाने के कारण अग्निहोत्रम जुहोति के अग्निहोत्र शब्द में आए हुए अग्नि शब्द का अर्थ होमाधार रूप अग्नि या देवता रूप अग्नि नहीं हो सकता। इस प्रकार अग्निहोत्र शब्द एक विशेष याग का पारिभाषिक नाम होता है। इससे यह सिद्ध हुआ है कि अग्निहोत्र जुहोति वाक्य में द्रव्य अथवा देवता का श्रवण नहीं होता और द्रव्य एवं देवता के प्रख्यापन किए बिना कोई वाक्य याग लक्षण के अनुसार याग जैसे कर्म का बोधक नहीं हो सकता। फिर कर्म स्वरूप मात्र बोध को विधि उत्पत्ति विधि के अनुसार अग्निहोत्रम जुहोति वाक्य उत्पत्ति विधि नहीं हो सका। सिद्धांती यद्यपि द्रव्य एवं देवता जैसे याग के दो रूपों में से कोई एक भी अग्निहोत्रम जुहोति वाक्य से साक्षात नहीं प्राप्त होता है, तथापि अर्थापत्ति प्रमाण से द्रव्य एवं देवता की प्राप्ति होती है। द्रव्य एवं देवता की उपस्थिति के बिना याग संपन्न ही नहीं हो सकता, अतएव इन दो रूपों की कल्पना कर लेनी चाहिए। इस प्रकार अग्निहोत्रम जुहोति को उत्पत्ति विधि ही मानना उचित होगा। इस विवेचन से यही सिद्ध होता है कि इस प्रकार की विधियों में जहाँ द्रव्य एवं अथवा देवता का श्रवण न हो वहाँ उनकी कल्पना कर लेनी चाहिए, रूपों का श्रवण आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं माना जा सकता, जिस विधि में द्रव्य या देवता का श्रवण न हो वह उत्पत्ति विधि ही न हो सके। दूसरे यह आवश्यक नहीं है कि जिस विधि में रूप का श्रवण हो वही उत्पत्ति विधि होती हो, अन्यथा दधना जुहोति को भी उत्पत्ति विधि मानना होगा, क्योंकि यहाँ दधि जैसे द्रव्यात्मक रूप का श्रवण होता है और यदि दधना जुहोति को उत्पत्ति विधि मान लेंगे तो अग्निहोत्रम जुहोति वाक्य व्यर्थ हो जाएगा, इस वाक्य का कुछ भी प्रयोजन नहीं रह पाएगा। जबकि मीमांसा दर्शन के लिए पद अथवा प्रत्यय को भी व्यर्थ मानना असह्य है, घोर अनर्थ है, इसलिए अग्निहोत्रम जुहोति को उत्पत्ति विधि ही मानना उचित होगा। प्रसंग जैसा कि पूर्व उल्लेख हो चुका है कि विधि के चार प्रभेद हैं, एक उत्पत्ति विधि, दो विनियोग विधि, तीन अधिकार विधि, चार प्रयोग विधि। इनमें से विधि के प्रथम प्रभेद उत्पत्ति विधि का लक्षण एवं परीक्षा अभी हो चुकी है। अब ग्रंथकार विधि के द्वितीय प्रभेद विनियोग विधि का लक्षण करते हैं। विनियोग विधि अंग प्रधान संबंध बोध को विधिर विनियोग विधि यथा दधना जुहोति इति स ही तृतीयया प्रतिपन्नांग भावस्य दधनो होम संबंधम विधत्ते दधना होमम भाव एत इति गुण विधौ च धात्वर्थस्य साध्यत्वेनान्वयः क्वचिदाश्रयत्वेनापि यथा दधनेन्द्रिय कामस्य जुहुयात् इत्यत्र दधिकरणत्वेनेन्द्रियं भावेत् तच्च किनिष्ठमित्याकांक्षायां सन्निधि प्राप्त होमम् आश्रयत्वेनान्वेति। अर्थ जिस विधि से अंग एवं अंगी के संबंध का ज्ञान होता है उसे विनियोग विधि कहते हैं, जैसे दधना जुहोति वाक्य विनियोग विधि है। तृतीया विभक्त्यंत दधना पद से ज्ञात होता है कि दधि अंग है और होम अंगी। इस प्रकार विधि से दधि एवं होम के बीच अंगांगी भाव संबंध का बोध होता है। दधना जुहोति का अर्थ दधना होमम भाव एत अर्थात दधि के द्वारा होम को संपन्न करे होता है। दधना जुहोति आदि गुण विधि में धात्वर्थ अर्थात क्रिया का साध्य रूप में अन्वय होता है। किंतु कहीं धात्वर्थ का अन्वय आश्रय रूप में भी होता है। उदाहरण के लिए दर्शनेन्द्रिय कामस्य जुहुयात, इस गुण विधि में धात्वर्थ का अन्वय आश्रय रूप में होता है, क्योंकि इस विधि का स्पष्ट अर्थ इस प्रकार हुआ, दधिकरणत्वेन इंद्रियं भावयेत, इस पर यह दधिकरणत्व किसमें स्थित होगा, इस प्रकार की आशंका आकांक्षा होने पर समीप श्रुत होम ही आश्रय रूप में अन्वित होता है। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी तृतीयाध्यायस्यार्थभूतं शेषे शेषिभावं निरूपयितुमिदानीं विनियोग विधिं लक्षयति। अंग प्रधानेति अंगानां द्रव्य देवतादि लक्षणानां प्रधानैर्वाक्यांतर विहितैः सहसंबंधस्य शेषत्व लक्षणस्य बोधको विधिरित्यर्थ। तत्रोदाहरणमाह यथा दध्नेति दध्ना जुहोतीति पयसा जुहोति इत्यादेरुपलक्षणार्थम् स ही विधिस्तृतीयया प्रतिपन्नांग भावस्य दध्यादे अग्निहोत्रम् जुहोति ति विहित होम संबंधम विधत्त इत्याहस हित्यादिना ननु दध्ना होमं भावयेत् होमे नेष्ठं भावयेदि ति साध्यत्वेन करणत्वेन च होमस्यान्वयः स्यात्। तथा च विरुद्ध त्रिक द्वय प्रसंग तथा हि दध्ना जुहोति इत्यत्र सकृदुच्चरितस्य जुहोतीत्याख्यातस्य दधिरूपगुणे किञ्चिदिष्टे च तन्त्रेण सम्बन्धाङ्गीकारे सत्युपायपादेयत्वं विधेयत्वं गुणत्वं चेत्येकं त्रिकम् उद्देश्यत्वं अनुवाद्यत्वं प्राधान्यं चेत्यपरं त्रिकं होमे सम्पद्यते कथम्। शृणु फल उद्देश्य होम उपादीयते फलम् अनुद्य होमो विधीयते फलं प्रधानं होम उपसर्जनम् एवं होममुद्दिश्य दध्युपादीयते होमम् अनुद्य दधि विधीयते होम प्रधानम् दध्युपसर्जनम् ततश्च होमे फलापेक्षयोपादेयत्वं विधेयत्वं गुणत्वं दधिरूप गुणापेक्षया चेद्देश्यत्वम् अनुवाद्यत्वं प्राधान्यं च सम्पद्यते न चान्न न तन्त्रेण सम्बन्ध किन्तु पृथग्धो मावृत्या सम्बन्धो भवतीति वाच्यम्। वाक्य भेद प्रसंगात दध्ना होमं भावयेत् होमेन चेष्टं भावयेदिति वाक्य द्वय प्राप्तेह तस्मान् दधि शब्दो गुण पर इति चेत् न भ्रांति मत्वात् तथा हि यत्र हि साध्यत्वेन करणत्वेन चैकस्य युगपत्तन्त्रेण सम्बन्ध आशंक्यते तत्रैव विरुद्ध द्वयस्य प्रसक्तिर्भवति यथा वाजपेयेन स्वराज्यकामो यजेत्यत्र तत्र च वाजपेय शब्दस्य पेयसुरा द्रव्यवाचित्वेन गुणा विद्या संख्यायां मत्वर्थ लक्षणा प्रसंगाक्षेपे तंत्रेण युग पर स्वराज्य फल वाजपेय गुण संबंधो यागस्य पूर्व पक्षितः तत्र विरुद्धत्री द्वय प्रसंगापादनेन यथोक्त्र द्रव्य निमित्तं वाजपेय शब्दस्य नामधेयत्वं राधान्तितम्। विरुद्ध त्री द्वय प्रसंगस्य फलमुद्दिश्य याग उपादीयते फलम् अनुद्य यागो विधीयते फलम् प्रधानम् याग उपसर्जनम् एवम् यागमुद्दिश्य वाजपेय उपादीयते यागम् अनुद्य वाजपेयो विधीयते यागः प्रधानम् वाजपेय उपसर्जनम् फलस्योद्देश्यत्वम् च मानसापेक्षो विषयत्वाकारः यागस्योपादेयत्वम् तनुष्ठीयमानत्वाकारः तौ चोभौ मनः शरीरोपाधिकौ धर्मौ भवतः अनुवाद्यत्व विधेयत्वे तु शब्दो पाधिकौ धर्मौ स्तः अनुवाद्यत्वं नाम मानान्तर्ज्ञातस्यानुकथ्यमानत्व विधेयत्वं चाज्ञातस्यानुष्ठेयत्वेन प्रतिपाद्यमानत्वं फलस्य प्राधान्यं नाम साध्यत्वेन यागस्योपसर्जनत्वं च साधनत्वेन बोध्यम् तथा यागस्योद्देश्यत्वं नाम मानान्तरसिद्धस्य विधेयान्वयितया निर्देश्यत्वम् न्यद्यथोक्तम् न चैवं होमे विरुद्ध त्रिकद्वय प्रसङ्गः तस्य साध्यत्वेन साधनत्वेन चात्र विधौ युगपत्तन्त्रेणान्वयानङ्गीकरात् किन्तु साध्यत्वेनैव तथा च होमस्योद्देश्यत्वम् अनुवाद्यत्वं प्रधानत्वमेव न तुपादेयत्वादिकं तस्मान् विरुद्ध त्रिकद्वया पत्तिरित्याशयेनाह गुण विधौ चेति धात्वार्थस्य साध्यत्वे नैवान्वय इति धात्वार्थस्य यागदान होमा देह साध्यत्वे नैवेत्यनेन साधनत्वे नान्वयं वारयति साधनत्वे नान्वयस्तु धात्वार्थस्य उत्पत्ति विधावधिकार विधौ च भवति न तु गुणविधा इत्यर्थः ननु गुणविधौ धात्वार्थस्य साध्यत्वे नैवान्वये दध्नेन्द्रिय कामस्य जुहुयात् द्वित्यत्र दध्ना होमं भाव इन्द्रिय कामस्येति वाक्यार्थः स्यात् तथा चेन्द्रियस्य साध्यत्वे नान्वये तस्या फलत्व प्रसंगः न च नात्र गुणविधि गुणपदस्यानर्थकत्व प्रसंगात् होमस्योभयरूपेणान्वये तु पूर्वोक्त दोषापत्ति शेत्यासंकयाः क्वचिदित्यादिना यद्वा गुणविधौ धात्वार्थस्य साध्यत्वे नैवान्वयो नान्यथा यत्र तु तृतीययोपात्तं दध्यादिगुणकरणत्वं तस्य प्रत्ययार्थत्वेन दध्यादिगुणादपि प्रधानत्वात् फलभावनायां करणत्वेन विधीयते तत्र तु धात्वार्थस्याश्रयत्वे नैवान्वय इत्याह क्वचिदित्यादिना क्वचिदिति यत्र दध्यादिगुणकरणत्वस्य फलभावनायां करणत्वेन विधानं तत्रेत्यर्थो न तु गुणविधा इत्यर्थः तच्चेति तृतीययोपात्तं तदधिकरणत्वं चेत्यर्थः होमाश्रयादधिकरणत्वेनेन्द्रियं भावयेदिति वाक्यार्थः तथा च करणस्य कर्तु व्यापार व्याप्यत्वनियमात् केवलदध्नः कर्तृव्यापारान्विष्टस्य कर्णत्वानुपपत्तेर्होमस्य च वाक्यान्तरप्राप्तत्वात् तयोर्विध्यनुपपत्तेः होमस्य गुणसम्बन्धविधाने फलपदस्यानर्थकत्वप्रसङ्गतस्य फलसम्बन्धविधौ च गुणपदस्यानर्थस्यापातात् फलगुणोभयसम्बन्धविधौ च प्राप्ते कर्मण्यनेकपदार्थविधाने वाक्यभेदप्रसङ्गात् प्राप्ते कर्मण्यनेक पदार्थविधानस्य च वाक्यभेदापादकस्य प्राप्ते कर्मणि नानेको विधातुं शक्यते गुणः अप्राप्ते तु विधीयन्ते बहवो तेकयत्नतः इति वचनविरोधेन स्वीकर्तुमशक्यत्वात् तृतीययोपात्तस्य दधिकरणत्वस्य होमनिरूपितत्वेन फलभावनायां करणत्वमत्र विधीयत इति भावः प्राप्ते कर्मणित्यत्र कर्मणो द्रव्यादि उपलक्षणत्वद गुणस्यापि प्रधानोपलक्षणत्वमेकोद्देशेनानेकविधावेव वाक्यभेदात् अतैव गृहैकत्वाधिकरणे गृहम् सम्माष्टीत्यत्र ग्रहोद्देशेनैकत्वसम्मार्जनविधौ वाक्यभेदाद् गृहैकत्वम् विवक्षितमित्युक्तम् तेन दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुया द्वितीयेन्द्रियसम्बन्धस्य प्रधानसम्बन्धत्वेऽपि न क्षतिः ननु कर्मणो द्रव्योपलक्षणत्वं भवतु गृहस्य द्रव्यत्वादगुणस्य प्रधानोपलक्षणत्वं कुत्र चरितार्थमिति चेत् न रेवत्यधिकरणे चरितार्थत्वात् तत्र हि एतस्यैव रेवतीषु वारवन्तीयम् अग्निष्टोम सामकृत्वा पशुकामो येतेन यजेतेति तत्र च ननु पशुकामस्य रेवतिर्नः सधपामाद इत्यादि रेवती स्वभृक्षु वारवन्तीयं सामगातव्यम् तथा चात्र रेवती नामृचां वारवन्तीय नामकेन साम्ना यः सम्बन्धः सो अयं पशु फलायाग्निष्टुति गुणो विधीयते एतस्यै वेत्यत्र प्रकृतिपरामर्शके नैतक् शब्देनान्य व्यावर्तकेन चैव कारणे अग्निष्टुतः समप्य समर्प्यमाणत्वादिति चेत् न रेवतीगाधार वारवन्तीय साम्नो अग्निष्टुत् कर्म साधनत्वं पशुफल साधनत्वं चेत्युभयस्य विधाने वाक्यभेदप्रसङ्गात् ततश्च पशुफलकं रेवत्रिगाधारक वारवन्तीय गुणविशिष्टं कर्मान्तरमत्र विधीयते न प्रकृते गुणः एतत् शब्दस्य तु बुद्धिस्थ परामर्शकत्वेनाप्युपपत्तेः एव कारस्य चायोगव्य वच्छेदकत्वम् योगव्यवच्छेदकत्वम् वोपपद्यत् इत्युक्तम् तस्मात् प्राप्ते होमे गुणफलसम्बन्धो भयविधौ वाक्यभेदो दुष्परिहर इत्यलम् अर्थबोधिनी विनियोगविधि अंगा अंगी भाव का ज्ञान कराती है। इसी के द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि स्थल विशेष में कौन किसका अंग है और कौन किसका अंगी। अंग का अर्थ होता है जो दूसरे के लिए हो अर्थात साधन, और अंगी का अर्थ होता है जिसका कोई साधन हो अर्थात साध्य या मुख्य। साध्य मुख्य होता है एवं तत्साधन भूत अंग तदपेक्षया गौण होता है, इसलिए अंग को गुण कहा जाता है। प्रकृत स्थल में अंगा अंगी भाव बोधक विधि का उदाहरण दधना जो होती है, दधि के द्वारा होम संपन्न होता है, अतएव दधि अंग है और होम प्रधान या अंगी, अतएव दधना जो होती का स्पष्ट अर्थ बोधक वाक्य दधना होमम भावयेत होता है। दधना पद में दधि करण कारक है और होम पद में होम कर्म कारक, अतएव दधना होमम भावयेत अथवा दधना जुहोति वाक्यों के सुनने से यह ज्ञात हो जाता है कि दधि होम का अंग है और होम दधि का अंगी अर्थात प्रधान। उक्त अंग एवं प्रधान के संबंध का ज्ञान कराने के कारण दधना जुहोति को विनियोग विधि माना जाता है। यह स्पष्ट हो गया है कि विनियोग विधि अंगा अंगी भाव का बोध कराती है। विनियोग विधि की एक विशेषता यह भी है कि इसमें प्रयुक्त धात्वर्थ अर्थात क्रिया का अन्वय प्रायः साध्य रूप में होता है। उदाहरण के लिए दधना जुहोति एक ऐसी विनियोग विधि है, इसका मीमांसाभिमत अर्थ बोधन दधना होमम भावयेत वाक्य से होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जुहोति पद से प्राप्त होम जैसा धात्वर्थ साध्य रूप से अन्वित है। होम साध्य है और दधि साधन करण साध्य होने के कारण ही होम को कर्म कारक में रखा गया है, किंतु कुछ स्थल ऐसे भी होते हैं जहाँ गुण विधि में प्राप्त धात्वर्थ का अन्वय आश्रय अर्थात अधिकरण रूप में होता है, अर्थात तत्त्व स्थलों के अर्थ बोधक वाक्यों में धात्वर्थ होम आदि क्रिया साध्य रूप में प्रयुक्त न होकर अधिकरण रूप में प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए दधनेन्द्रिय कामस्य जुहुयात, यह एक गुण विधि है। उक्त गुण विधि का स्पष्ट अर्थ यह है कि होमाश्रय दधिकरण करणकत्व के द्वारा इंद्रिय बल को प्राप्त करे। यहाँ पर दधि शब्द का अर्थ दधि करणत्व में लाक्षणिक है, अर्थात लक्षणा द्वारा दधि शब्द का अर्थ दधि करणत्व मान लेना चाहिए। दधि करणकत्व इसमें दधि करणक का अर्थ बहुव्रीहि समास से दधि है, करण जिसका ऐसा समझना चाहिए। दधि करणकत्व भी घटत्व पटत्व आदि की भांति ही एक धर्म है। धर्म कभी धर्मों के बिना नहीं रह सकता अर्थात आश्रय के बिना नहीं रह सकता, अतएव उस दधि करणकत्व धर्म को किसी आश्रय की आवश्यकता होती है, अतः दधि करणकत्व धर्म की निष्ठ है अर्थात इसका आश्रय कौन है। इस प्रकार की आकांक्षा होने पर धात्वर्थ भूत होम उसके आश्रय रूप में उससे अन्वित होता है। इस प्रकार अन्वय होने के कारण वह दधि करणकत्व धर्म होमाश्रित हो जाता है, अतः उक्त प्रकार से होमाश्रितेन दधि करणकत्वेन इंद्रियं भावयेत अर्थात होमाधारक दधि करणकत्व के द्वारा अर्थात होम को दधि करणक बनाकर इंद्रिय बल प्राप्त करे। इस प्रकार का वाक्यार्थ बोधन दधना इंद्रिय कामस्य जुहुयात इस वैदिक वाक्य से होता है, इसलिए यहाँ धातु अर्थ भूत होम आश्रय रूप में अन्वित होता हुआ स्पष्ट प्रतीत होता है। यह विचारणीय है कि किस गुण विधि में धात्वर्थ साध्यत्वेन अन्वित होता है और किस में आश्रयत्वेन। ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस गुण विधि में फल श्रवण न हो और न ही अधिकार विधि के लक्षण के माध्यम से फलश्रुति हो, वहाँ धात्वर्थ का अन्वय साध्य रूप में होगा। जैसे दधना जो होती स्थल में और जहाँ साक्षात अथवा अधिकारी के विशेषण रूप में फल का श्रवण हो, वहाँ धात्वर्थ का अन्वय आश्रय रूप में होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ गुण रूप से विवक्षित पदार्थ का अन्वय फल भावना के साथ विवक्षित हो, वहाँ धात्वर्थ का आश्रयत्वेन अन्वय होता है। उदाहरण के लिए दधनेन्द्रिय कामस्य जुहुयात, इस गुण विधि वाक्य स्थल में इंद्रिय रूप फल का श्रवण होता है, अतएव यहाँ धात्वर्थ का अन्वय आश्रय रूप में हुआ है। सारांश यह है कि जिस गुण विधि में मुख्य पद का श्रवण होगा, वहाँ धात्वर्थ आश्रयत्वेन अन्वित होगा, अन्यथा साध्यत्वेन अन्वित होगा। प्रसंग, विनियोग विधि में अंगा अंगी का ज्ञान कराने में जो छह प्रमाण सहायक होते हैं उनका उल्लेख किया जा रहा है। विनियोग विधि सहकारी भूतानि षट प्रमाणानि एतस्य विधि सहकारी भूतानि षट प्रमाणानि श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या रूपाणि एतत् सहकृतेनानेन विधिनांगत्वं परोद्देश्य प्रवृत्ति कृति साध्यत्व रूपं परार्थ्या पर पर्यायं ज्ञाप्यते। अर्थ: विनियोग विधि छह प्रमाणों की सहायता से अंगांगी भाव का बोध कराती है। ये छह प्रमाण इस प्रकार हैं: एक श्रुति, दो लिंग, तीन वाक्य, चार प्रकरण, पांच स्थान एवं छह समाख्या। यह विधि इन प्रमाणों की सहायता से अंगत्व का बोध कराती है। अंगत्व का पर्यायवाची शब्द परार्थ है और अंगत्व का लक्षण है परोद्देश्य प्रवृत्ति कृति साध्यत्वम्। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी एतस्य विधेरिति लक्षितस्य विनियोग विधेरित्यर्थ एतत् सहकृतेनेति एतत् प्रमाण षटक सहकृतेनेत्यर्थ विनियोग विधि सहकारित्वम् च तेषां विनियोग विधिकृत विनियोगे प्रमाणत्वात् भवतीति बोध्यम् अनेन विधिनांगत्वम् ज्ञाप्यत् इत्यन्वयः अंगत्वम् लक्षयति परोद्देशेत्यादिना यद्वा ननु न शेषत्वा परनामकस्य विनियोग विधि बोध्यत्वं संभवति तस्या निरूपणात् तदनिरूपणं च लक्षण प्रमाणा भावान् तावद् विना भूतत्वं तत्त्वं आग्नेयादिनां शरणां विना भूतत्वेन परस्परं शेषत्वापत्तेः नापि प्रयोज्यत्वं शेषत्वं पुरुडाश कपालेन तुषानुपवति त्यत्र तुषोपवनम् प्रतिशेषत्वेन श्रुतस्यापि पुरोडाश कपालस्यो पवापाक प्रयोज्यत्वात् न च विध्यंतर विहितत्वं शेषत्वमिति वाच्यम् इषेत्वेति छिन्नति त्यत्र पलाशा शखा छेदनस्य सत्यपि शेषत्वे विध्यादि विहितत्वे नाप्याप्ति संगात् नापि तत्र प्रत्यक्षं प्रमाणम् लोके तत्वेपि वेदेतस्य शब्दैक गम्य तोपगमात् नापि शब्द के नापि शब्देन शेष शेषी भावस्या प्रतीयमानत्वात् लोके क्रियाकारकान्वयस्यैव व्युत्पत्ति प्रयोजकत्व दर्शनेन तत्र कस्यापि शब्दस्य व्युत्पत्ति ग्रहात् तत्र च न हेतुरपि उपलभ्यत इति चेत् अत्रोच्यते न तावदस्य लक्षणासंभवः परार्थस्यैव निर्दुष्ट शेषत्व लक्षणत्वात् नापि तत्र प्रमाणाभाव शब्दगम्यत्वात् न च तत्र व्युत्पत्त्यभावात् कथम् शब्दगम्यत्वमिति वाच्यम् शेषशेषी भावस्यान्वये अन्तर्भावात् तत्र व्युत्पत्त्युपपत्तेः न हि गुणप्रधानभावमन्तरेणान्वयः सम्भवति द्वयोः प्रधानयोर्गुणयोर्वा परस्पराकाङ्क्षारहितत्वेनान्वययोग्यत्वाभावात् ततो यथा क्रियाकारक तदन्वयाः शब्दगम्यास्तथा तदन्वयान्तर्गतः शेषशेषी भावोऽपि शब्दगम्य एव नापि तत्र हेतुर्भावः विवादास्पदः प्रयाजानुयाज प्रोक्षणादिः शेषो भवितुमर्हति परार्थ्यात् भृत्यादिवदिति हेतुसत्त्वात् न च परार्थस्येव लक्षणत्वे च हेतुत्वे साङ्कर्यप्रसङ्ग इति वाच्यम् सेनानां महारथी वदाकार भेदेन तद्भेदोपपत्तेः दृष्टान्ते गृहीतव्याप्तिम् हि सहायीकृत्य बोधकत्वाकारो हेतुरितरव्यावृत्त्या बोधकत्वाकारस्य लक्षणमिति तद्भेद इत्यभिप्रेत्यांगत्वं लक्षयति परोद्देशेति परं स्वर्गादिरूपं उत्कृष्टं साध्यं फलं तदुद्देशेन संकलनया मनसि सिद्ध वत्करणेन तत्साधन यागादीषु प्रवृत्तस्य पुरुषस्य कृतिसाध्यत्वरूपम् कृतिव्याप्यत्वरूपमित्यर्थ तथा च स्वर्गफलोद्देशेन दर्शादिषु प्रवृत्तपुरुषकृतिव्याप्यत्वम् प्रयाजानुयाजावघात प्रोक्षणादिनाम् सुप्रसिद्धमिति तेषाम् शेषत्वम् यद्वा परशब्दो दर्शादिपरः तथा च तदुद्देशेन प्रवृत्तपुरुषकृतिव्याप्यत्वम् प्रयाजादिनाम् भवतीति तेषाम् तत्त्वम् दर्शादेस्तु प्रयाजादुद्देशेन प्रवृत्तपुरुषकृतिव्याप्त्वा भावान् तन्नातिव्याप्तिः तत्रात्य व्याप्ति केवल प्रयाजाद्य उद्देशेन कस्यचिदपि पुरुषस्य प्रवृत्त्य भावादिति ध्येयम् ननु कर्माण्यपि जैमिनी फलार्थत्वात् तत्फलं च पुरुषार्थत्वात् पुरुषस्य कर्मार्थत्वादि त्यत्र जैमिनी सूत्रत्रये कर्मफल पुरुषाणामपि शेषत्वमुक्तं तत्र च कर्मणां फलोद्देशेन प्रवृत्तकृतिसाध्ये अपि फलपुरुषयोस्तु पुरुषकर्मोद्देशेन प्रवृत्तपुरुषकृत्यसाध्यत्वात् कथं शेषत्वमिति चेत् अत्र वक्तव्यं स्वर्गस्य साक्षात्कृतिसाध्यत्वाभावेऽपि यदा पुरुषः स्वसर्गोद्देशेन दर्शादिषु प्रयतते तदैव कालान्तरे पूर्वद्वारेण स्वर्गो जायते नान्यथेति भवति पुरुषकृति व्याप्यत्वं तस्य तथा स्वर्गफलोद्देशेन दर्शाद्युद्देशेन वा प्रवृत्तः पुरुषो यदैव तदनुष्ठानानुकूलं स्वप्रयत्नेन सम्पादयति तदैव कर्म निष्पद्यते नान्यथेति तस्यापि भवति पुरुषकृति व्याप्यत्वमिति सर्वमनवद्यम् अर्थबोधिनी विभाग 22 के अंतर्गत हम देखते हैं कि दधना जुहोति जैसी विनियोग विधि में दधि अंग है और होम अंगी दधि के अंगत्व का ज्ञान अर्थात दधि अंग है यह ज्ञान दधना पद में प्रयुक्त तृतीय विभक्ति से होती है। इस प्रकार यह अंगत्व ज्ञापन में तृतीय विभक्ति प्रमाण हुई किंतु यह आवश्यक नहीं है कि अंगत्व का ज्ञापन सर्वत्र तृतीय विभक्ति से ही हो। तृतीय विभक्ति के अतिरिक्त और भी प्रमाण है जिनकी सहायता से कोई विनियोग विधि अंगत्व का ज्ञान कराती है। तृतीय विभक्ति एक प्रमाण श्रुति का एक प्रभेद मात्र है। अंगत्व ज्ञापन में सहायक भूत कुल छह प्रमाण माने गए हैं। ये हैं एक श्रुति, दो लिंग, तीन वाक्य, चार प्रकरण, पांच स्थान एवं छह समाख्या। कभी कभी किसी स्थल में एक से अधिक प्रमाण प्राप्त होते हैं और उनसे क्रमशः भिन्न भिन्न पदार्थ अंग होते हुए समझे जाने लगते हैं, किंतु एक काल में एक विधि से एक ही पदार्थ का अंगत्व समझा जाएगा, एकाधिक पदार्थ का अंगत्व नहीं। अतएव जो प्रमाण प्रबल होता है उसके सहाय से निश्चित किया गया अंगत्व ही मान्य होगा, तदितर नहीं। उक्त छह प्रमाणों में क्रमशः पूर्ववर्ती प्रमाण सबल है अर्थात सर्व प्रबल श्रुति प्रमाण है। श्रुति से निर्बल लिंग है किंतु लिंग श्रुति के अतिरिक्त अन्य सभी प्रमाणों से सबल है। इसी प्रकार अन्य प्रमाणों के संबंध में भी समझ लेना चाहिए। समाख्या सबसे अधिक निर्बल है। इन सभी प्रमाणों का विवेचन ग्रंथकार आगे करेंगे। ध्यान रहे कि अंगत्व का ज्ञापन विनियोग विधि के द्वारा होता है। अनेन विधिना अंगत्वम ज्ञाप्यते, साक्षात श्रुत्यादि प्रमाणों के द्वारा नहीं, प्रमाण विधि के द्वारा अंगत्व ज्ञापन में सहकारी होते हैं, न कि स्वयं ज्ञापक। विनियोग विधि के द्वारा अंगांगी भाव का बोधक होता है, अंग गौण होता है और अंगी मुख्य श्रेष्ठ अर्थात पर अंग से अंगी उपकृत होता है, अंग के लिए होता है अर्थात अंग परार्थ होता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि अंगत्व परार्थ या दूसरा पर्याय शब्द है। ग्रंथकार ने अंगत्व का लक्षण परोद्देश प्रवृत्त कृति साध्यत्व रूपम किया है, जिसे अन्य शब्दों में परार्थ शब्द की ही व्याख्या समझनी चाहिए। अंगत्व के लक्षण के साथ ही परार्थ पर पर्यायम पद का प्रयोग ग्रंथकार के पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी किया है, जिसको लौगाक्षी भास्कर ने अत्यंत भेद से उद्घृत सा कर दिया है। उदाहरण के लिए आचार्य आपदेव के मीमांसा न्याय प्रकाश में अंगत्व लक्षण विषयक वाक्य इस प्रकार मिलता है, एतत् सहकृतेन विधिनांगत्वम् परोद्देश प्रवृत्त कृति व्याप्यत्व रूपम् परार्थ पर पर्यायम् ज्ञाप्यते। पंडित चिन्न स्वामी शास्त्री का यह मत है कि परार्थ्या पर पर्यायम् पद का प्रयोग इसलिए किया गया है कि यहाँ अंगत्व का लक्षण जैमिनी के अंगत्व लक्षण से भिन्न न समझा जाए। जैमिनी ने शेष का लक्षण इस प्रकार किया है, शेषः परार्थत्वात्। अब अंगत्व के लक्षण परोद्देश प्रवृत्ति कृति साध्यत्व रूपम के अर्थ पर विचार करना चाहिए। परोद्देश प्रवृत्त कृति साध्यत्व रूपम की मुख्यतः दो प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। एक, परम तस्य उद्देश्येन प्रवृत्तः यागादि प्रवृत्तः यः पुरुषः तस्य पुरुषस्य कृत्या व्यापारेण साध्यत्वं संपाद्यत्वं, पर का अर्थ श्रेष्ठ अर्थात स्वर्गादि फल है। स्वर्ग प्राप्ति का इच्छुक व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करने की इच्छा से स्वर्ग के साधन भूत दर्श आदि याग करने में प्रवृत्त होगा। ऐसे व्यक्ति को परोद्देश प्रवृत्त कहेंगे और यागानुष्ठान में सक्रिय उस व्यक्ति की क्रिया ही परोद्देश प्रवृत्ति कृति कहलाएगी। उस परोद्देश प्रवृत्ति कृति रूप क्रिया के द्वारा साध्य अर्थात संपाद्य प्रयाज अनुयाज अवघात एवं प्रोक्षण आदि कर्म अंग हुए तथा इन प्रयाज आदि का अंग होना ही अंगत्व है। परह दर्शादि आगह तस्य उद्देश्येन प्रवृत्तस्य पुरुषस्य कृत्या व्यापारेण साध्यत्वं संपाद्यत्वं। यहाँ पर शब्द का अर्थ स्वर्ग का साधन भूत याग लिया गया है। स्वर्ग के साधन भूत याग के संपादन में प्रवृत्त पुरुष की कृति का साध्य भूत प्रयाज आदि क्रियाएं अंग होंगी। यद्वा पर शब्दो दर्शादि परह तथा च तदुद्देशेन प्रवृत्त पुरुष कृति व्याप्यत्वं प्रयाजादीनां भवति इति तेषां तत्त्वम्। वस्तुस्थिति यह है कि पर शब्द अन्यवाची है, तदनुसार किसी भी अन्य के लिए कृति साध्य अर्थात निष्पाद्य होने वाला अंग कहलाने का अधिकारी होता है। इस व्याख्या के अनुसार प्राप्त होने वाला अंगत्व सभी क्षेत्रों के लिए समान रूप से उपयुक्त हो पाता है, अतः अंगत्व की यह व्याख्या सर्वाधिक व्यापक होती है। उदाहरण के द्वारा इसे यूं समझा जा सकता है कि हाथ पांव आदि शरीर रूप अंगी के अंग इसलिए हो जाते हैं कि ये स्वातिरिक्त समग्र शरीरात्मक अंगी के लिए ही निष्पन्न हुए होते हैं। इसलिए शरीर के किसी भी भाग में मक्खी बैठने पर हाथ उसे हटाने के लिए प्रवृत्तशील पाया जाता है, इसलिए हाथ पांव आदि शरीर के अंग कहलाते हैं। अंगी शब्द का अभिप्रेत अर्थ होता है मुख्य और अंग शब्द का अभिप्रेत अर्थ होता है उस मुख्य के प्रयोजन सिद्धि में काम आने वाला गौण इसके स्वामी होता है। मुख्य अंगी और उसके अनेक भृत्य होते हैं, उसके अंग क्योंकि स्वामी की प्रयोजन सिद्धि के लिए सारे भृत्य सचेष्ट हुआ करते हैं। प्रसंग विनियोग विधि के सहकारी भूत उक्त श्रुत्यादि छह प्रमाणों में सर्वप्रथम प्रमाण श्रुति के लक्षण सहित प्रभेदों का उल्लेख किया जा रहा है। श्रुतेर लक्षणम प्रभेदाश्य तत्र निरपेक्षो रवह श्रुति साच त्रिविधा विधात्री अविधात्री विनियोक्त्री च तत्राद्या लिंगाद्यात्मिका द्वितीय ब्रीहादि श्रुति यस्य च शब्दस्य श्रवणादेव संबंध प्रतीयते सा विनियोक्त्री। अर्थ उनमें से प्रमाणांतर की अपेक्षा न रखने वाले शब्द को श्रुति कहते हैं। श्रुति के तीन भेद हैं, एक विधात्री, दो अभिधात्री, तीन विनियोक्त्री। लिंग आदि श्रुति को विधात्री श्रुति कहते हैं, ब्रीही आदि श्रुति को अविधात्री श्रुति कहते हैं और जिस शब्द के सुनने मात्र से अंगांगी भाव संबंध का ज्ञान हो जाता है उस शब्द को विनियोक्त्री श्रुति कहते हैं। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी तत्र श्रुतिम लक्ष्यति तत्र निरपेक्षो रव इति तत्र षण नाम श्रुत्यादि प्रमाणानाम मध्ये इत्यर्थः स्वकरणीये शेषत्व बोधे प्रमाणांतर निरपेक्षः शब्दः। श्रुतिरित्यर्थः रव इत्युक्ते वाक्या दावति प्रसंगस्त्वद्वारणाय निरपेक्ष इत्युक्तं ताम च श्रुतिं विभजते सा च त्रिविधेति विधात्री विधानकर्त्री अविधात्री अविधानकर्त्री विनियोक्त्री विनियोगकर्त्री तत्राद्यामुदाहरति तत्राद्यालिंगात् द्यात्मकेति तत्र तीसृणां श्रुतीनां मध्य इत्यर्थः आदिना लीडादिग्रह अविधात्री मुदाहरति द्वितीया ब्रीहादिति तृतीयां विनियोक्तिं लक्ष्यति यस्य चेत्यादिना संबंध इति विनियोज्य विनियोजक भावः संबंध इत्यर्थ शेष शेषिणो रीति वा शेषः। अर्थ बोधनी ग्रंथकार ने यहाँ थोड़े अंतर के साथ आपदेव के मीमांसा न्याय प्रकाश को ही उद्धृत कर दिया है। श्रुति का लक्षण निरपेक्षो रवह किया गया है, जैसा कि लिंग वाक्य आदि के विवेचन से स्पष्ट हो जाएगा कि लिंग एवं वाक्य आदि अंग भाव के बोधन में सहकारी अवश्य होते हैं किंतु स्वतंत्र अर्थात निरपेक्ष रूप से नहीं। सबों को अपने पूर्व प्रमाणों की अपेक्षा रखते हुए अंत में श्रुति की अपेक्षा होती है। उदाहरण के लिए स्थान प्रमाण को ही लीजिए, स्थान को प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा होगी, प्रकरण को वाक्य की, वाक्य को लिंग की एवं लिंग को श्रुति की अपेक्षा होगी। इस प्रकार वाक्य को यहाँ अपने से पूर्व के सभी प्रमाणों की अपेक्षा होती है, किंतु श्रुति को किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती है। श्रुति विनियोग विधि द्वारा किए जाने वाले अंगत्व बोध में निरपेक्ष रूप से अर्थात अन्य किसी प्रमाण की अपेक्षा न रखते हुए सहकारिणी होती है, इसलिए श्रुति को निरपेक्षो रवह कहा गया है। यहाँ विनियोग विधि का प्रसंग चल रहा है, किंतु यहाँ जिस श्रुति के विधात्री अविधात्री एवं विनियोगत्री ये तीन विभाजन किए गए हैं, वह विनियोग विधि परक श्रुति के विभाग नहीं है। विनियोग विधि परक श्रुति तो उन तीनों में से केवल एक विनियोगत्री श्रुति है, परंतु श्रुति सामान्य को बिना समझे विनियोगत्री रूप श्रुति विशेष को भला कैसे समझा जा सकता है। इसलिए निरपेक्षो रवह श्रुति इस लक्षण वाक्य के द्वारा विधात्री अविधात्री एवं विनियोगत्री तीनों श्रुतियों को पहले सामान्य भाव से समझाया गया। किसी भी स्तुति को सामान्य रूपेण समझ लेने के पश्चात विशेष रूप से उसके संबंध में जिज्ञासा का उदित होना संभव ही है कि श्रुति के प्रकार कितने हैं। अतः इस जिज्ञासा के शांति के लिए विधात्री विधात्री विनियोगत्री च इस कथन के द्वारा श्रुति के तीन प्रभेदों का उल्लेख किया गया है। अनंतर विनियोग श्रुति ही विनियोग विधि के साथ मिलने पर उस विधि के द्वारा अंगा अंगी भाव के स्थापन में सहाय करती है, इसे बतलाया गया है। विधात्री श्रुति लिंगा व्यात्मिका होती है, जैसे अग्निहोत्रम जुहोति में लट मात्र विधात्री श्रुति है, क्योंकि लिंग अथवा तदर्थवाची लट आदि में ही शाब्दी भावना होती है, जिसके सुनने पर आर्थी भावना की उत्पत्ति होती है एवं विधि का विधान सम्पन्न होता है। विधत्ते इति विधात्री, इसलिए लिंग आदि प्रत्यय का श्रवण विधात्री श्रुति कहे जाते हैं। अविधात्री श्रुति ब्रीहि आदि का विधान मात्र करती है, अतएव जिस स्थल पर विधान एवं विनियोग अभिप्रेत न होकर केवल पदार्थ के अभिधान उच्चारण के द्वारा अपेक्षित वस्तु का ज्ञापन होता है, वह श्रुति अविधात्री श्रुति मानी जाती है। जैसे ब्रीहीन वहंती, यहाँ ब्रीहीन पदगत ब्रीहि शब्द का उच्चारण अविधात्री श्रुति है। अविधात्री का अर्थ है अविधया स्वार्थम प्रतिपादयति इति अविधात्री। प्रसंग अब विनियोगत्री श्रुति के प्रभेदों का उल्लेख करके प्रथम प्रभेद के स्वरूप का विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। विनियोक्त्या श्रुते श्रय विध्यं तृतीया विभक्ति श्रुते रुदाहरणंच सापि त्रिविधा विभक्ति रूपा एक एकाभिधान रूपा एक पद रूपा चेति तत्र विभक्ति श्रुत्यांगत्वं यथा ब्रीहिभिर्यजेत इति तृतीया श्रुत्या ब्रीहिणां यागांगत्वं तदपि पुरोडाश प्रकृतितया यथा पशो हृदयादि रूप हविः प्रकृतितया यागांगत्वं अरुणर्या पिंगाक्षा एक हायन्या गवा सोमं त्रिणाति इत्यस्मिन् वाक्ये अरुण्यस्यापि तृतीया श्रुत्या त्रयांगत्वं तदपि गोरूप द्रव्य परिच्छेद द्वारा न तु साक्षात् अमूर्तत्वात् अर्थ और उस विनियोग त्रिश्रुति के भी तीन प्रभेद होते हैं, एक विभक्ति रूपा दो एक विधान रूपा और एक पद रूपा। विभक्ति श्रुति के सुनने से अंगत्व का ज्ञान होता है। ब्रीहिभिर्यजेत वाक्यगत ब्रीहि पद में तृतीया विभक्ति के सुनने पर ज्ञात होता है कि ब्रीहि याग का अंग है। ब्रीहि पुरोडाश की प्रकृति होने से याग का अंग बनते हैं। यह उसी प्रकार जैसे कि हविर्भूत हृदय आदि की प्रकृति होने से पशु याग का अंग होता है, साक्षात नहीं अरुणया पिंगाक्षा एक हायन्या गवा सोमम कृणाति। यह एक विधि वाक्य है, इसका अर्थ है पीली आंखें वाली एक रक्त वर्ण गाय से सोम खरीदे। इस वाक्य में अरुणया पद में शुद्ध तृतीया विभक्ति से अरुण प्रयण का अंग समझा जाता है, वह भी साक्षात नहीं अपितु गो रूप पिंड के ज्ञापक रूप में। यह इसलिए कि अरुण अमूर्त पदार्थ है, वह साक्षात प्रयण क्रिया का अंग नहीं बन सकता। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी विनियोग त्रिमपि श्रुतिम विभजते सापि त्रिविधेति तत्र विभक्ति रूपां विनियोग त्रिमुदाहरति तत्रेति यद्वा ननु विनियोगत्र्याः श्रुते लक्षण विभागा वनुपपन्नौ तस्या अंगत्वा बोधकत्वादित्या शंकया तत्र विभक्ति श्रुते रंगत्व बोधकत्वं दर्शयति तत्रेति तिसृणां विनियोक्तॄणां मध्ये इत्यर्थः विभक्ति श्रुत्यांगत्वं बोध्यत एव तथोपलब्धेरिति कुत्रोपलम्भ इति वीक्षायां तत्रोदाहरणमाह यथा ब्रीहिभिरिति तदपीति ब्रीहिणां यागांगत्वम् इत्यर्थः ब्रीहिणां पुरुडाश प्रकृतितया यागांगत्वे दृष्टान्तमाह यथा पशोरिति अथ हृदयस्याग्रे वद्यत्यथ वक्षस इत्यादि शास्त्रात् पशोर्हृदयादिरूप हविरूपादानतयैव यागांगत्वं न साक्षात् तद्वदत्रापीत्यर्थ क्वचित् तु साक्षात् पशोरेव यागांगत्वं यथा पात्निवत् यागे तत्र हि पशुराग्नेयस्य जीवत एवोत्सर्गः क्रियते पर्यग्निकृतं पत्निवन्त मुसृजन्तीति वाक्यात् तथा च यत्र पशुर्विशसनं हृदयाद्यवदानं च भवति तत्र हृदयादि प्रकृतिरेव पशुरिति सिद्धम् तृतीया विभक्ति रूपाया विनियोक्त्या उदाहरणान्तर माह आरुण्यस्या इत्यादिना अरुणयापि पिङ्गाक्षा एकहायन्या सोमं क्रीणाति ज्योतिषोम प्रकरणे श्रुत्या श्रुतस्यारुणिम गुण चेत्यर्थ क्वचित् पुस्तके मूलग्रन्थ एवेदं वाक्यमुदाहृतम् अत्रारुणशब्दो रुडिमानं गुणमाचष्टे तस्य गुणविषयतया प्रयुक्तस्यापि नागृहीतविशेषणा विशिष्टबुद्धिरिति न्यायेन गुणबोधकत्वादन्वयव्यतिरेकसिद्धगुणमात्रव्युत्पत्तिकत्वाच्च पिङ्गाक्षिशब्दस्तु पिङ्गलवर्णविशिष्टक्षि मद्द्रव्यवाचको भवति एकहायनी शब्दश्चैकसंवत्सरविशिष्टगो द्रव्यवाचकः तौ च शब्दौ यद्यप्येकगोवाचकौ भवतस्थापि विशेषणभूतधर्मभेदाच्च शब्दद्वयमुपपद्यते तच्च युगपत्प्रवृत्तम् सद्धर्मद्वयवशिष्टम् गोद्रव्यम् क्रयसाधनत्वेन विधत्ते अरुणशब्द स्वरुडिम् गुणस्य कारकाणाम् क्रियान्वयनियमेन सोमक्रयणान्वयेऽपि साक्षात् साधनत्वेनामूर्तरुडिमानम् गुणम् न विदधाति अमूर्तस्य साक्षात् साधनत्वात् सम्भवात् किन्तु सोमक्रयण साधनीभूत गोद्रव्यपरिच्छेदकत्वेन तत्साधनम् तथा च परस्परम् अन्वितानामेवारुण्यपिङ्गाक्षित्वादिनाम् कारकाणाम् क्रियान्वयनियमात्करणविभक्तिभिः सोमक्रयणेऽङ्गत्वेनान्वये सत्यारुण्यादेश्य गुणत्वेनामूर्तस्य स्वतः सोमक्रयणसाधनत्वायोगात् साधन गोद्रव्यपरिच्छेदकत्वेन पश्चात् परस्परम् पार्षणकान्वयो भवति एकहायनि गः सापिङ्गाक्षऋणा चेत्याशयवानाः तदपीति क्रयाङ्गत्वम् इत्यर्थः अर्थबोधिनी ग्रन्थकार ने श्रुति के तृतीय प्रभेद विनियोक्तृ के प्रभेद करके उन प्रभेदों के स्वरूप का परिचय उदाहरणों द्वारा दिया है किंतु उन्होंने श्रुति के प्रथम एवं द्वितीय प्रभेदों का उल्लेख मात्र करके छोड़ दिया है इसका कारण यही है कि प्रथम एवं द्वितीय श्रुति प्रभेद विनियोग विधि के प्रसंग में अपेक्षित नहीं है वस्तुतः विनियोग विधि के प्रसंग में श्रुति पद का अर्थ विनियोक्तृ श्रुति ही समझना चाहिए प्रभेद काल में श्रुति पद का अर्थ व्यापक लिया गया था न कि विनियोग विधि परक विभक्ति एक का भी धान एवं एक पद रूपा विनियोक्तृ श्रुति के द्वारा अंगत्व के निश्चय होने में सहायता प्राप्त होती है अतएव श्रुति तीन प्रकार की बतलाई गई है एक विभक्ति रूपा एकाभिधान रूपा एवं एक पद रूपा ब्रीहिभिर्यजेत एक विनियोग विधि है यहाँ ब्रीहिभिः में प्रयुक्त तृतीया विभक्ति विनियोक्तृ श्रुति है तृतीया विभक्ति रूपा श्रुति द्वारा यह समझा जाता है कि ब्रीहि याग का अंग है याग क्रिया को मुख्य समझकर उसके अनुष्ठान करने में ब्रीहि साधन रूप में विनियुक्त होता है साधन मुख्य की अपेक्षा गौण या अंग होता है अतएव ब्रीहि याग का अंग हुआ ब्रीहि याग का अंग होता है यही अर्थ ब्रीहिणाम यागांगत्वम पदों से अभिहित होता है किंतु जैसा कि यज्ञ विधानों से अवगत होता है, याग में व्रीहि का विनियोग अपने प्रकृति रूप में अर्थात धान के रूप में नहीं होता, अपितु विकृति रूप में पुरोडाश रूप में होता है। धान से चावल निकालकर चावल को पीसकर उसके आटे से बने पके हुए पिंड को पुरोडाश कहते हैं। याग में धान का साक्षात विनियोग न होने के कारण विहि याग का साक्षात अंग भी नहीं बनता, अपितु अपने विकृति पुरोडाश के माध्यम से अंग होता है। इस प्रकार पुरोडाश की प्रकृति होने से विहि याग का अंग होता है। याग में भी नियुक्त अर्थ च यागांग भूत किसी पदार्थ की प्रकृति होने के कारण प्रकृति भूत पदार्थ भी याग का अंग होता है। इस मान्यता की पुष्टि एक सामान्य उदाहरण से की गई है। पशु यागों में पशु को याग संपादक माना जाता है, तदनुसार पशु को याग का अंग समझा जाता है, परंतु समूचे पशु की आहुति नहीं दी जाती, अपितु पशु के हृदय आदि विभिन्न अवयवों को काटकर उनकी हवी दी जाती है। फिर इस प्रकार पशु उस याग का साक्षात अंग नहीं बनता, अपितु हविर्भूत अपने हृदयादि अवयवों की प्रकृति होने के कारण अंग बनता है। पुरोडाश के अंगत्व का समर्थन पशु के अंगत्व रूप दृष्टांत से करने का कारण यह है कि प्राचीन ग्रंथों में पशु के यागांग का विस्तृत विवेचन मिलता है। कालांतर में पशु का स्थान पुरोडाश ने ले लिया और पुरोडाश के विनियोग से ही पशु विनियोग का फल मान लिया गया। इस प्रकार यहाँ पूर्व वृत्त के द्वारा पर वृत्त का समर्थन किया गया है। विभक्ति रूपा श्रुति के द्वारा ब्रह्म आदि मूर्त पदार्थ के यागांगत्व का विवेचन करने के बाद अमूर्त पदार्थ के यागांगत्व का विवेचन अरुणया पिंगाक्षा एक हायन्या गवा सोमम कृणाति वाक्य को उद्धृत करके किया गया है। उक्त उदाहरण में सोम क्रयण का विधान है। सोम को ऐसी गाय देकर खरीदना चाहिए जिसे ये तीनों विशेषताएं हो। एक, गाय अरुण हो। दो, उसकी आंखें पिंग वर्ण हो। और तीन, उसकी आयु एक वर्ष हो। यदि किसी गाय में इन तीनों विशेषताओं में से एक भी कम होगी तो उससे सोमक्रयण नहीं हो सकता, और स्वेच्छया सोमक्रयण कर लेने पर तत्प्रयुक्त अदृष्ट की उत्पत्ति नहीं होगी। अरुणया पद में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ तृतीया विभक्ति रूपा विनियोग त्रिश्रुति से अरुण क्रयण किया क्रिया का अंग समझा जाता है। यद्यपि सोम क्रयण में साक्षात गाय का विनियोग होता है, गाय से ही सोम खरीदा जाता है, अरुण से नहीं। अरुण गुण है, गुण में क्रिया नहीं होती। क्रिया तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं मन इन पांच मूर्त द्रव्यों में ही होती है। गाय पृथ्वी द्रव्य के अंतर्गत है और सोम क्रयण में साक्षात विनियुक्त होने के कारण क्रयण का अंग होती है। फिर अरुण सोम क्रयण का कैसे अंग बनता है? क्या अरुणया पद ही व्यर्थ है? नहीं, अरुण गाय का विशेषण है। हर एक गाय से सोम खरीदने से क्रयण जन्य अदृष्ट नहीं उत्पन्न हो सकता, अपितु तीन विशेषणों से परिच्छिन्न गायों के द्वारा ही हो सकता है। अरुण भी उनमें से एक विशेषण है जो अरुणेतर गायों का निराकरण कर देता है। इस प्रकार पिंगाक्षित्व एवं एक हायनित्व भी गो द्रव्य परिच्छेदक होते हैं। गाय क्रयण का साक्षात अंग है, किंतु अरुण गुण विशिष्ट गाय ही क्रयण का अंग बन सकती है, तदितर नहीं। इस प्रकार अरुण गोव्यावर्तक रूप में क्रयण का अंग होता है, साक्षात नहीं। इस विवेचन से सिद्ध होता है कि विभक्ति रूपा श्रुति से अरुण जैसे अमूर्त पदार्थ भी क्रियांग समझे जाते हैं। प्रसंग द्वितीय विभक्ति रूपा विनियोग श्रुति अंगत्व बोध में विनियोग विधि की सहायिका होती है। इस विषय का विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है।